जय जय श्री राधे श्याम। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते चैतन्य चंद्राय।
ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय।
नारायणं नमस्कृत्य सरस्वतीं व्यासं।
देवीं सरस्वतीं व्यासं।
ततो जयेम उदीरये।
ततो जयेम उदीरये।
श्री गुरुवे गौरचंद्राय। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय।
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय।
तद्भक्ताय नमो नमः।
तद्भक्ताय नमो नमः।
जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय राधा माधव कुंज
राधा माधव कुंज बिहारी।
राधा माधव कुंज बिहारी।
जय राधा नहीं दूसरी संपत्तियों
आस्वादन सुख का
जय श्री कृष्ण चैतन्य जय कलि प्रगटे ब्रज राम क्रियेश्वरी मखेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गो चैतन्य चरितामृत के श्रोताओं को सादर वंदन, हृदय से धन्यवाद। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की मंगलमय लीलाओं को गाना सुनना ये बड़े सौभाग्य की बात है। वैसे प्रभुपाद की परम करुणा से आज पूरे विश्व में ये जो संकीर्तन हो रहा है उसके मूल पिता श्री चैतन्य महाप्रभु है। संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो, कमल के जैसी जिनकी सुंदर आंखें हैं वे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस संकीर्तन के प्रवर्तक है, पिता है। इसलिए वासुदेव घोष नाम के गंगा के तट पर वैष्णव हुए, उन्होंने निवेदन किया वैष्णवों को, गावो गावो पुनः गौरांगे रघुण सरल करिया मन ये भव सागरे ये मन दयाल ना देखियो एक जन। इस पूरे त्रिभुवन में सबसे दयालु ना देखिए गौरांग के समान दूसरा कोई दयालु अवतार नहीं देखा, जिसकी जिसके चरित्र में प्रेम भक्ति की सुगंध है। लिखा गया है कि चैतन्य महाप्रभु के गुणों की गाथा में उस शब्दों में वो शक्ति है, वो प्रेम है कि पत्थर भी पिघल जाते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी है, हृदय राधा का है। और आप सबको शायद श्रीमद् भागवत से संत वैष्णव मुख से सुना हुआ प्रसंग होगा, बड़ा पवित्र रासलीला। जय जय रासलीला सर्व रस सार, भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं हैं, उन लीलाओं में मुकुटमणि ताज है रास। और यमुना के तट पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को लेकर जब अकेले में चले गए तो सारी करोड़ों करोड़ों गोपियां वृंदावन में यमुना की उज्जवल उज्जवल बालू में, क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि यमुना के तट पर जो बालू होती है ना, रेती के कण, वो एकदम उज्जवल था, मानो पूर्णिमा के चांद को मिक्सर में डाल के उसको चटनी बना के बिखेर दिया हो चारों ओर, उसको चूर्ण बना के, चंद्रमा का ही चूर्ण बना के फिर फेंक दिया गया, उड़ा दिया गया हो, चमक रहा था बिल्कुल। और उसमें गोपियों का सौंदर्य मुख, कृष्ण प्रेम से भरा हुआ लबालब हृदय, जैसे चाशनी को आप रसगुल्ले में बोल डालते हो ना, निकालते हो तो पूरा रसमय होता है, ऐसे ही गोपियों का हृदय कृष्ण प्रेम भक्ति रस से भरा है। भगवान का अदर्शन, भगवान आंखों से ओझल हो गए तो सारी गोपियां कातर भाव से अंतकरण से रो रही है। सुखदेव जी ने वहां पर शब्द दिया गंगा के तट पर, रुरुदु सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों की हृदय में इतनी लालसा थी कि रुरुदु से रोने में भी स्वर था। गोपियों का कंठ बड़ा मधुर है, भगवान की प्रिया है, सभी सद्गुणों से विभूषित है। इस संसार में थोड़ी भी कोई भक्ति करता है उसमें भी बहुत सारे सद्गुण आ जाते हैं, तो भगवान की परम प्रिया है ब्रज वनिताएं, उन गोपियों के सद्गुणों की क्या बात कहे, जिससे कृष्ण भी आकर्षित हो जाते हैं। वे सारी गोपियां सुखदेव जी कहते रुदु रो रही थी। बृहद वैष्णव तोषणी में श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं रुरुदु शब्द का अर्थ, वो कहते हैं कि पाषाण पत्थर को भी फाड़ दे, तोड़ दे, उस गोपियों की स्वर में जो कारुणा करुण्यता थी, जो करुणा थी, वो प्रेम का जो प्रभाव था, उससे पत्थर भी फट जाते थे, एकदम हृदय से आवाज आती। तो ये तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं राधा भाव में है, गोपियों के विषय में इतना है, इसलिए उनके जो ये चरित्र है वो पत्थर जैसा हृदय होगा उसमें भी प्रेम भर देगा। किसी गुजराती कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, जारे जड़ वहतु हशे अडीने, जारे जड़ वहतु हशे अडीने, तो पत्थरों ने कैंक तो थतु हशे। कभी कभी हम गुजराती में कहते पत्थर ऊपर पानी नाखो छो प्रभु जी, नहीं भले फिर भी पत्थर पर भी जब पानी गिरता है तो कुछ तो अंदर होता है, कुछ समय के लिए ठंडा, कुछ समय के लिए गीला तो होता है। और अगर पत्थर पानी में ही पड़ा रहे तब तो धीरे धीरे अंदर उतरता है। पशु पाखी झूरे पाषाण विदरे सुनियार गुण गाथा सुनियार गुण गाथा। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनकर पशु पक्षी भी झूमने लगते थे, मस्त हो जाते थे भक्ति रस में। मयूर मयूरी प्रेमे, चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में गए तो दोनों भुजाओं को उठाकर महामंत्र मस्ती से गा रहे थे, तो एक मयूर, एक पिकॉक, एक मोर सामने आया। तो चैतन्य महाप्रभु नाच रहे तो मोर भी नाचने लगा, तो मोर नाचने लगी तो ढेलने थी हूं कमरे जाओ तुम ई नाचो हमारी। मयूर मयूरी प्रेमे नाचिया खेला ढोले ढोले गोरा चा हरि गुण गा। सब नाचने लगते थे, झूमने लगते। बस मनुष्य जीवन कृष्ण प्रेम भक्ति में नाचने गाने के लिए मिला है। श्रीमद् भागवत के शुद्ध भक्तों के लक्षणों में वर्णन है कि वो नाचता है, गाता है, रोता है, कभी हंसता है। और ऐसा कीर्तन करता हुआ वैष्णव जब पृथ्वी से निकलता है, पृथ्वी पर चलता है, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव से कहते हैं, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। मेरी भक्ति से जो युक्त है वो वैष्णव भुवनम पुनाति, त्रिभुवन को पवित्र कर देता है। तो बस इसी प्रेम भक्ति के रंग में रंगने के लिए अवतार हुआ राधा कृष्ण का मिलित स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य। व्यास जी ने पद्म पुराण के प्रकरण में लिखा है कि संसार के सारे जीव किस स्थिति में है। हम लोग तो कह सकते हैं मजामा, ठीक है हम लोग, लेकिन व्यास जी क्या कहते हैं हमारे विषय में। काल व्याल मुखम ग्रासम, हम सभी काल रूपी सर्प के मुख में है। काल रूपी अजगर सर्प, किसी को 50 साल, किसी को 40, किसी को 30 निगल चुका है। हम कहते हैं मजा मा, आई एम फाइन, लेकिन हम मृत्यु के मुख में है ये पता नहीं हमको। त्रास निर्णाश हेतवे, बोले चलो आज इतना मृत्यु के मुख में, लेकिन बाहर है उतना तो सुख है। बोले बाहर है वहां भी त्रास है, उपाधि चिंता से भरे हैं। आप कभी वो सीन देखे हैं, प्रभुपाद ने वर्णन किया है, सर्प जब मेढक को पकड़ता है तो कभी कभी गप करता है, तो सर्प का एक स्पेशल विशेषता है कि वो चबाता नहीं है, वो क्या करता है निकल जाता है, चबाता नहीं है वो आहार को, वो निगलता है। कभी कभी गप करके पकड़ता है तो आधे मेढक प्रभु जी अंदर आते हैं, आधे तो बाहर हो जाते हैं। तो बस वही सीन है हमारा, हम आधे मुख में है, कोई पा कोई पौना है तो मुख में। इसलिए इस संसार सर्प भुजंग से, इस विषय के विष से हमें मुक्त होना है। तो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के एक मधुर लीलाओं का स्मरण कराते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब निमाई रूप में सची आंगन में लीला करते थे, परम निर्भय सर्व आंगने विहरे, आंगन में सुंदर लाला सचिर दुलाला, विहार करते थे माता सची, उनको सुंदर सिंगार करती थी, आजू बाजू की नारियां उसके रूप देख के मोहित होती थी और कीर्तन होता था तो चैतन्य महाप्रभु नाचते थे। उसी समय अचानक एक विषय भयंकर सर्प निकला, वो तो गंगा के तट पर गांव है और आजू बाजू वनस्पति गार्डन है, तो एक महाविषधर विशाल सर्प आया चैतन्य महाप्रभु के सामने। चैतन्य महाप्रभु उस समय 3-4 बस महीने के थे, ज्यादा नहीं, घुटनों भर चलते थे बस, जानुभ्याम रिंग पाणिभ्याम, पाणी और जानु को हाथ लगा के चलते थे और कभी बैठ सकते, उस समय बैठ सकते बच्चा। तो बाड़ी ते एक सर्प बाहर आई लो, एक सर्प बाड़ी से बाहर आया और चैतन्य महाप्रभु उसके सामने गए। सामने जाते ही वो महाविषधर सर्प कुंडली लगा के, सर्प कुंडली लगाते जानते हैं ना, और कुंडली लगा के ऐसे बैठ गया चैतन्य महाप्रभु के सामने। तो चैतन्य महाप्रभु जाके उसके नजदीक जाते एकदम, और वो भी ऐसे ही बैठ गए उसके सामने, तो सर्प भी बैठ रहा है, सर्प हिल रहा है पूरा, अपनी फैन को फुला के फैला के। और जानते सर्प को दो जीवा होती है, जीवा होती है उसमें दो भाग होता है। भागवत में आप कालियादह की लीला सुनो तो उसमें ये वर्णन है, सुखदेव जी कहते चक्षु श्रवा, सर्प को कान नहीं होता, आपको पता है, आपने सर्प के कान देखे नहीं होता, तो फिर सर्प सुनता कैसे है बिना कानों के, वो आंखों से ही सुनता है, इसलिए सांप को चक्षु श्रवा कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्षु से सुन लेता है, जैसे गाय आदि पशु है वो जीभ से सूंघ के ही क्या आहार है पता चल देता है, आंख से उसको पता नहीं, वो सूंघ के समझ जाते हैं कि ये क्या आहार है। भगवान ने प्रत्येक योनियों में कुछ कुछ विशेषता दी है। फिर चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन किए थे, उसके सामने बैठे, वो महाविषधर कुंडली लगा के बैठा है, तब तक चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, अपने को थोड़ा जमीन पर गिरा के वो सर्प जहां कुंडली लगाया था उसके ऊपर सर रख दिया तकिया बना के। आप कर सकते हो ऐसा? हम इस लीला से एक बहुत सुंदर मैसेज है, चैतन्य महाप्रभु इस महाविषधर सर्प की कुंडली में तकिया लगा के एकदम सो गए मस्त, छोटे से है शिशु है, और वो सर्प ऊपर बैठा है छाया कर रहा है छत्र। ऐसा ऐसा आपको याद आता है, ऐसा सीन हुआ था वसुदेव टोपला मा मेली निहाल्या, सुखदेव जी भागवत में कहते शेष अन्वगाद्वारी निवारयन फणे, उस समय एक साक्षात भगवान अनंत शेष वारी बरसा हो रही थी ना, झरमर वर से मैं हुलिया, वो बरस रहा था, तो बलराम जी ने सोचा कि हमारे ठाकुर पर पानी की बूंदों का आघात न हो इसलिए छत्र लगा के चल रहे थे। वसुदेव भी सोच रहे कि हमारा लाला पता नहीं क्या किस क्या पुत्र पाया है, किस अनंत से इसको सया करना है, हम लोगों तो ये लीला भी नहीं पचेगी। मान लीजिए आप अपने पुत्र को जा देख के कहीं जा रहे और सामने सर्प ऐसा है, ठीक, लेकिन सेवक प्रभु है बलराम कि भले मुझे इस जन्म में वो बड़ा बना रहे लेकिन मेरा काम तो सेवा ही सेवा है, स्वभाव थोड़ी छोड़ेंगे, क्यों कुछ नहीं हुआ कोई डर नहीं, क्योंकि ये हमारे जो ठाकुर जी है श्री कृष्ण भगवान जो श्याम वर्ण के है वो कलयुग में पीत गौर सोने के वर्ण में आए हैं, उसकी शैया ही वासुकी नाग है, रोज सर्प पर सोते ये कोई नई बात, भगवान विष्णु कहां सोते हैं, भृगु महाराज गए तब शीर समुद्र में, आप देवता लोग जब गए तब वर्णन आता है कि भगवान तो भुजंग शयनम शांताकारम, यही श्लोक है ना महाभारत का, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। पद्मनाभ जिनकी नाभि से कमल निकलता है और भुजंग पर, साधारण भुजंग नहीं। अच्छा सांप को भुजंग क्यों कहते हैं? क्योंकि सांप को हाथ भी नहीं होता, ये जो भुजा ही उसका अंग है, इसलिए सांप को क्या कहते हैं? उरग। उर मतलब छाती, ग मतलब गमन करना। सांप छाप हमेशा छाती से चलता है ना, ऐसे ही चलता है ना, छाती से ही जाता है, इसलिए उरग भुजग, अंग ही जिसकी भुजा है, भुजंग, उस पर सोते हैं और नाभि से कमल निकलता है, इसको भगवान कहते हैं। और इस कलयुग में कोई अपने आप को भगवान कहे तो एक छोटा सा कोबरा लेके उस गुरुजी के रूम में छोड़ देना चाहिए, देखिए कैसी लीला होती है। कोई कहे कि हम कृष्ण के अवतार हैं, साउथ इंडिया में हम यात्रा लेके गए थे अभी अभी, वहां एक बिलबोर्ड था भगवान कल्कि प्रकट हो चुके हैं। मैं बोला हमको पता नहीं गुजरात वालों को, रही गया मैं किधर, भगवान कल्कि एकदम बिल्कुल तलवार लेके घोड़े पे, घोड़ा पे तो महाराणा प्रताप ही चढ़ता था, कल्कि थे अत्यारे केटला गधेड़ा घोड़ा पर चढ़े दरिया किनारे, तो कल्कि थे जाए 50 रुपए में बिठाता है वो। केवल बस क्योंकि ये तो भगवान थे तब भी हुआ, भागवत ने वर्णन है, नकली दो हाथ लगा के अवतार हो गया वासुदेव का वो पौंड्रक, जब भगवान थे तब भी नकली भगवान थे, तो भगवान नहीं है अब तो चांस ही चांस है खुल्लम खुला। लेकिन ये भगवान कृष्ण इस गौर लीला से ये दिखाना चाहते हैं आज की कथा में, आप समझोगे भक्तों, कि जो सुख भक्त बनने में है वो भगवान बनने में, भगवान स्वयं भक्त बने हैं, भगवान स्वयं भक्त अवतार ले रहे हैं क्योंकि उसको सुख आनंद है, क्योंकि जो विषय होता है ना उसमें आनंद नहीं, उस विषय का जो आस्वादन करता है उस आश्रय में आनंद है। कृष्ण तो विषय है, सब उसी के आश्रय में है, सब उसी को देखते हैं, उसी से सुख लेते हैं। अब भगवान सोचेंगे कि मुझे विषय नहीं, मुझे किसी का आश्रय बनना है, क्योंकि सुरक्षित और सुखी जो आश्रय है वो है। कोई चिंता नहीं, तो भगवान भक्त भाव में मूड में है, अपने भक्तों के भी वो भक्त बन जाते हैं लीला में भी। लेकिन यहां पर कलयुग में सबको एक रोग लग गया है, भक्त नहीं बनना किसी को, बस भगवान बनना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। ओके कल्कि की तो बात ही छोड़ो, परम पूज्य मुरारी बापू को याद करो तो एक ही शब्द वो कहते थे कि कल्कि खबर नहीं कल्कि थी गयो, काल एनु हूं था एने कल क्या उसको पता नहीं, कल की पता नहीं और कल की हो गए कल क्या होगा वो भी मालूम नहीं उसके खुद को, लेकिन बनना है सबको कल की। जबकि भागवत में लिखा है कि ये तो प्रथम संध्या चल रही है, कलयुग के अंत में आने वाले हैं वो, और किसके घर नाम दिया गया है विष्णु शर्मा, किस ब्राह्मण के यहां, किस गांव में, शंबल गांव में, बिल्कुल पहले से निश्चित है। ये तो अभी से हो गए, मुझे लगता है कि वो कल्कि होंगे तब तक तो 1,00,000 कल्कि आके मर जाएंगे, अभी से इतना क्रेज है तब तक तो क्या होगा, भगवान भी मानो सोच लेंगे चलो प्रोग्राम बन इतने कल्कि हो गए तो मैं एक एक्स्ट्रा क्यों जाऊं, इतना लोगों का ये हो रहा है। लेकिन भगवान की जन्म कर्म चमे दिव्यम, भक्तों इन लीलाओं को सुनोगे ना अलौकिक, जो सामान्य मनुष्य और देवताओं की शक्ति से कहीं परे। भगवान कृष्ण छोटे से थे, भला हल लेकर आई पूतना को मार दिया, भगवान भगवान है। ऐसे यहां चैतन्य महाप्रभु है छोटे से, लेकिन सर्प पर बिंदास सोए है, क्यों? क्योंकि उसको कोई डर नहीं, क्योंकि ये तो छोटा सा सर्प है। सर्पों के राजा जो वासुकी है, अनंत शेष है, ये तो इनकी शैया है, भुजग शयनम। विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम सुभंगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर्ध्यानगम्यम् वंदे विष्णो भवभयहरम् सर्वलोकेकनाथम्। बड़ा सुंदर व्यास भगवान ने यह श्लोक लिखा है। भगवान सर्प पर सोए हुए कमल नयन, कमल नाग, पद्मनाभ, लक्ष्मी जी प्रकट होकर, एक तरफ ब्रह्मा जी और सृष्टि हो रहा है, एक श्लोक में सारा भागवत का कई अध्याय आ जाता है। ये है भगवान। कुंडली करिया सर्प रहिल बेड़िया। सर्प तो बड़ा खुश हो गया। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि सामान्य सर्प नहीं था, भगवान ही सेवा करने के लिए अनंत शेष आ गए थे अपने प्रभु के एक अंश से, तो बड़ा सुख मिल रहा था सेवा करके। कालिया को भी, कालिया का भी यह सौभाग्य तो रहा कि उसने कृष्ण को पूरा अखबार में ले लिया। बोले इसको सर्प ऐसे ही करता है, अजगर बड़े बड़े होते हैं ना, शिकार को पकड़ते हैं तो अराउंड अराउंड करके फिर अपने शरीर को ऐसे बैंड करते हैं कि जो अंदर फंसा हुआ जीव शरीर है वो चूर्ण हो जाए, या फिर निगल जाएंगे उस आहार को और फिर शरीर को ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो अंदर अंदर चटनी बनाएंगे। महाभारत में वर्णन है, भीम को भी पकड़ा था, नहुष राजा अकबर बन गए थे, अजगर अकबर आ गया अजगर बने थे तो भीमसेन को पकड़ लिया। भीम तो किसी भी सर्प को चूहा समझता था, कोई सर्प उसके लिए क्या हाथ से उड़ाओ मारो, लेकिन इस बार भीम की भी हवा निकल गई, वायु अंश थे लेकिन ये छुट ही नहीं रहे। क्या बात है, रात हो गई, युधिष्ठिर महाराज ने सोचा है भीम आया क्यों नहीं, जंगल में ढूंढने गए तो देखा कि भीम तो पूरा अजगर ने उसको पकड़ लिया था। युधिष्ठिर भी समझ गए कि सामान्य अजगर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा भाई भीम किसी सर्प से बंदी बन नहीं सकता। प्रणाम करके पूछा, देवता आप कौन है और क्यों हमारे भाई भीम को पकड़े हैं? बस इतना महाराज युधिष्ठिर ने केवल उसका पूछा कि आप कौन है, क्यों पकड़े है, तो उसी समय वो अजगर शरीर छूट गया और एक तेजस्वी नहुष देवता प्रकट हो गए, और उसी वंश के पूर्वज राजा थे। युधिष्ठिर को प्रणाम कहे करके कहे, बोले धन्यवाद आपको धर्मराज। भीम सोच रहा है कि ये क्या सीन हो रहा है, अभी पकड़े तो भी आदमी हो गए। बोले अगस्त्य ने श्राप दिया था हमें हमारी कामांधता के कारण, और इसलिए मैं सर्प बन चुका था। मैं क्षमा मांगा उस ऋषि के चरणों में, तब उसने कहा था कि किसी कभी जीवन में किसी साधु वैष्णव धर्म से पथ पर चलने वाले भक्त से तेरी चर्चा होगी ना, उसी समय तेरी सर्प योनि समाप्त हो जाएगी। देखिए किसी वैष्णव से सत्संग बात करने से क्या पुण्य मिलता है, महाभारत इसको प्रकट करता है। बोले जीवन में कभी वैष्णव से तुम बात करोगे, सच्चे वैष्णव से, उसी समय तुम्हारा सर्प योनि समाप्त, अजगर शरीर से मुक्ति। और धर्मराज आपके साथ केवल थोड़ी बात करते ही मुझे मेरे सर्प शरीर से छुट्टी मिल गया। तो ये आहार करते हैं, इस तरह पकड़ते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को कोई डर नहीं। सारे ब्राह्मण, सारी ब्राह्मण स्त्रियां सब, अरे क्योंकि सर्प को जो भी देखता है डर जाता है, जो भी देखता है डर जाता है। और निमाय बिंदास सोए है और सर्प ऐसे भी हिल रहा है, सर्प भी खुश है कि चलो आज सेवा मिल गई। लेकिन सब स्त्रियां डर के बोले, कैसे इसको हटाए यहां से, कैसे हटाए, कैसे हटाए। तब निमाय को इशारा करे, ए निमाय। निमाय बिल्कुल मुस्कुरा, बच्चे को तो क्या बुद्धि नहीं, ऐसे हंसता है, दुख हो चाहे सुख हो। माता यशोदा ऐसे ही होता था, कृष्ण को डांटते थे, कृष्ण हंसते थे, बच्चा प्राय हंसता है क्योंकि उसको बुद्धि नहीं होता है कि हमारा गुण गाया जा रहा है कि हमको गाली दी जा रही क्योंकि कोई भाषा जानता नहीं ना वो। यस्ते व्यस्ते सबे नारी निमाय लइया, कैसे भी करके नारियों ने सोचा कि सर्प से इसको छुड़वाना है, अभी डस सकता है, क्या करे क्या न करे। और धीरे धीरे स्त्रियों ने साहस करके निमाय के प्रति प्रेम होने के कारण गई पास में, क्योंकि सर्प ऐसे ही बैठा था, हिल नहीं रहा था, तो निमाय को इशारा करे हिल नहीं रहा है, वो भी हंस रहा है, हंसते हंसते धीरे धीरे जाके उसको खींच लिया, उठाया और झटाक से लेकर भाग गई अलग जगह, और सर्प वही बैठा है। और सब सची माता के पास देखे, सब खुश हो गए, आनंद हो गए, चलो आज रक्षा हो गई, बच गया हमारा निमाय। और चैतन्य महाप्रभु तो वहां भी हंस रहे थे, यहां भी हंस रहे, बोले क्या हो गया। तब सर्प महाराज धीरे से अपनी कुंडली पुनः समाप्त करके चले गए, और चैतन्य महाप्रभु के लिए सारी स्त्रियों ने कीर्तन किया, बोले आज विष्णु ने बचा लिया, उसको क्या मालूम ये वही है। माता सची ने कुछ पुण्य किया है, जगन्नाथ मिश्र ने कुछ धर्म दान दिया है, उसका प्रभाव है कि उसके बच्चे की रक्षा, बोल रही है इस नारी, और सत्य बोल रही है। जिसके माता पिता धर्म भक्ति में हो, उस माता पिता के पुण्य भक्ति का प्रताप होता है कि बच्चे की रक्षा होती है। और इसके प्रमाण तो हमारे भागवत के श्रोता परीक्षित महाराज ही है, माता की भक्ति थी उत्तरा की, जो गर्भ में जाकर कृष्ण ने रक्षा कर दी। तो माता पिता का किया हुआ दान धर्म पुण्य भक्ति बच्चों को सुरक्षित रखता है, सुखी करता है, निश्चित है। लेकिन इस लीला का सार क्या है, तो छोटी सी आप कहोगे इसमें क्या भगवत्ता, एक मदारी भी कर सकता है ये, राइट। कभी कभी हम कृष्ण लीला कहते कि कृष्ण ने गिरिराज उठाया, उसमें क्या है, पुलस्त्य ने उसके पहले उठाया था, गोवर्धन आया कैसे यहां, वो पुलस्त्य नाम के ऋषि काशी से, वो तो वहीं से, कोई भी कर सकता है। भगवान की कृपा से सिद्ध योगी भक्त भी ये सब काम कर सकता है, देवता भी अपनी शक्ति से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान की यह मधुर दिव्य लीला होने के कारण वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, भक्ति करी यही सब वेद गोप्य सुने, वेद भी इस लीला को नहीं समझ पा रहा है, इस लीला को चैतन्य महाप्रभु की अगर आप भक्ति भाव से सुनोगे, संसार भुजंग तार करे ना लंघने, तो आपको ये संसार का विषय भोग का सर्प कभी डसेगा, जीवन में कभी सांप नहीं काटेगा। आशीर्वाद दिया जा रहा है कि जो चैतन्य महाप्रभु की इस लीला को सुनेगा उसको संसार सर्प काटेगा नहीं। देखो दो सर्प है, जैसे हम उपमा दे रहे, एक तो सर्प जो विष होता है काटता है, लेकिन एक संसार सर्प जिसकी मैंने पहले बात की, मृत्यु वाली काल, और तीसरा है एक विषय का सर्प। आप सबको हमको एक सर्प ने डसा है, विषय का सर्प, क्या ये काम क्रोध लोभ जो हृदय में है, और बाहर से आंख से हम रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, ये जो विषय है शब्द रूप रस, ये हमको डसे हुए, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु की इस मंगलमय पावन चरित्र को सुनेगा तो उसको संसार विषय सर्प से मुक्ति हो जाएगा। ये बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया गया। और माता सची फिर अपनी ओर से मंत्र तंत्र करने लगी, जैसे पूतना के शरीर से गोपियों ने कृष्ण को उठाया, तो फिर सुरक्षा की मंत्र पढ़ा कि भाई हमारा लाला बच गया, नहीं तो इतनी विकराल राक्षसी आई थी, वात्सल्य रस में है। और पुनः स्नान करा के, सिंगार करा के, सुखी करके, प्रसाद देके या दूध पिला के निमाय को सुंदर सुंदर गहने पहन के छोड़ दिया, खेलो बच्चों के साथ, अब सुखी है। और निमाय पंडित खेलते खेलते छोटे से है, बाजू वालों के घर में नटखटपना तो स्वभाव पुराना था, द्वापर वाला ही है, कलर फरा है, कलर चेंज हो गया, स्वभाव थोड़ी चेंज होता है। बाजू वालों को बच्चों को चुटिया काटना, चोरी करना, तोड़फोड़ करना, ये लीला तो इसमें भी है, यहां तक माटी खाने की भी लीला है। चैतन्य महाप्रभु को माता सची ने एक सुंदर पेड़ा, बंगाल में संदेश कहते हैं, लाके दिया, आई तो निमाय संदेश लइया बसिया, इधर बैठो पेड़ा खाओ। तो चैतन्य महाप्रभु पेड़ा खा रहे हैं, संदेश मिठाई, तो उसको छोड़ के मिट्टी खा रहे हैं, बहुत सारी मिट्टी खा भी ली, और माता सची ने आके देखा दो पांच मिनट के बाद कि हो गया होगा खत्म, तो पेड़ा तो आधा ही हुआ है, बाकी तो मिट्टी खा रहा है। हे निमाई, माटी क्यों खा रहे हो? तो निमाई ने कहा, मैया तुमने तो खाने दिया माटी, तो माटी ही खाऊंगा ना। अरे मैं तुमको माटी खाने दी कि संदेश खाने दी? मैं तो तुमको पेड़ा दे के गई थी, तुम पेड़ा छोड़ के माटी क्यों खा रहे हो? तो बड़ी तत्व की बात बोलते हैं श्री निमाई, श्री चैतन्य महाप्रभु। एहो माटी सेहो माटी के भेद विचार। अरे मैया ये भी मिट्टी है और ये भी मिट्टी है, मिट्टी से ही तो बना है, क्या क्या भेद है इसमें, क्या फर्क है? तो सचिन ने कहा, देखो बेटा ये भी मिट्टी से बना है, तू भी, सब भी मिट्टी से ही बने हैं और सब मिट्टी के ही विकार है, लेकिन फर्क है, ये जो पेड़ा वाली मिट्टी खाओगे ना तो शरीर सुंदर बनेगा, निरोग बनोगे, और ये वाली डायरेक्ट खाओगे ना तो रोगी हो जाओगे, पेट खराब होगा। मिट्टी मिट्टी है, लेकिन जब घड़ा से घड़ा मिट्टी से जब घड़ा बनाया जाता है और तुरंत उसमें पानी डालो तो फूट जाएगा, लेकिन उसको पक जाए फिर उस घड़ा के रूप में कुछ दिनों के बाद तैयार हो जाए, फिर उसके अंदर कितना भी पानी डालो वो फूटेगा नहीं। ये भी मिट्टी, ये भी मिट्टी, लेकिन वो पानी को सुरक्षित करता है मिट्टी, ये नहीं कर पाता, क्यों? निमाई सोच रहे क्या क्या बोल रहे बिल्कुल ध्यान से सुन रहे। तब उसने कहा, हाँ मैया अच्छा हो तुमने हमको बता दिया, पहले बताना चाहिए ना, तो मैं नहीं खाता था, अब कभी जीवन में मिट्टी नहीं खाऊंगा, अब पेड़ा खाऊंगा। अरे मेरा निमाई, अब बात तो छोटी सी हो गई, वहां पर तो थोड़ी, यमुना तट पर तो थोड़ा लंबा है कृष्ण लीला के मिट्टी का वर्णन, लेकिन यहाँ निमाई पंडित पंडिताई कर रहे हैं, ये क्या सिखा रहे? ये हो माटी से, ये भी मिट्टी, ये भी मिट्टी, ये यशोदा को सॉरी सची माता को बोलना, इसके पीछे कारण क्या है? जैसे यहां पर लोग कहते हैं आप भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म है, हाँ जैसे कहते ना, ये भी माटी, ये भी माटी, हम सब एक है। ये निमाई पंडित खंडन कर रहे इस सिद्धांत का, ओके हम ब्रह्म है लेकिन कृष्ण परब्रह्म है, और अपने आप को परब्रह्म मानना ये हमारा भ्रम है, ब्रह्म नहीं है, हम क्या है? भ्रम है हमारा, उस अविनाशी के अंश है लेकिन अणु है, और कृष्ण विभू है, इसलिए कृष्ण माया के अधिपति है और हम माया के अधीन है। समुद्र का एक बिंदु, और समुद्र स्वभाव से कलर से एक है लेकिन क्वांटिटी में फर्क है ना, एक भी है लेकिन फर्क भी तो है, गुणों से एक है, मात्रा में तो अंतर है ना। तो हमारे आत्मा का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है, जो कृष्ण का स्वरूप है, लेकिन शक्ति में, प्रभाव स्वभाव में, कहां शूद्र जीव माया र किंकर, हम तो माया के अधीन बद्ध होकर जन्म मृत्यु में घूम रहे हैं। और कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम, अर्जुन ये पूरा विश्व ब्रह्मांड मेरी अध्यक्षता में एक प्रकृति काम करती है, और हमारी अध्यक्षता में करवाले भी नहीं, कहां के हम ब्रह्म हैं। इसलिए इस सिद्धांत का खंडन हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु कमेंट दे रहे हैं कि ये भी माटी, ये भी माटी, फर्क क्या है? आप भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, और इसलिए आप कभी यहां संसार में किसी को कहो प्रभु जी हरे कृष्ण मंत्र जपो, गीता भागवत पढ़ो, सब ब्रह्म है, हम तो अंदर ही करते हैं, ये चलता है ना। प्रभुपाद जी एक बार अलाहाबाद ट्रेन में जा रहे थे, और ये कुंभ मेला माघ महीने में स्नान होता है ना, अभी गया एक महीना तक त्रिवेणी में, बड़ा मेला लगता है, बहुत ठंड थी, और प्रभुपाद जी के पास एक सुंदर कंबल था, विदेशियों ने दिया था, तो ट्रेन में थे तो एक महात्मा, भारतीय महात्मा सामने की सीट में थे, तो प्रभुपाद जी का तो सन्यासी वेश था, लाल वस्त्र थे, तो सन्यास वो भी सामने साधु थे, गाड़ी वाले कोई और संप्रदाय के होंगे, उसने कहा स्वामी जी क्या कर रहे हो? प्रभुपाद चेंट कर रहे थे, हरे कृष्णा जप कर रहे थे, बोले कृष्ण का नाम ले रहा है। उसने कहा अरे नाम रूप सब मिथ्या है, ये तो बचपन है, हम सब ब्रह्म है, कुछ नहीं करना, बस ब्रह्म में मन मस्त रहना है। प्रभुपाद ने कहा ओके आप ब्रह्म है लेकिन हम तो जीव है और हमको भक्ति करना है। ज्यादा तर्क वितर्क किया नहीं, रात हो गई, ट्रेन चल रही है, ठंड बढ़ रही है। उस महात्मा के पास एक छोटी सी पतली सी चादर थी, वो जो केस होता है उतना, और प्रभुपाद तो मस्त बढ़िया कंबल डाल के सोए है, वो दिया था। तो ये बेचारे ट्रेन की गर्मी में, ट्रेन हिल रही थी, इससे ज्यादा ये हिल रहे थे ठंड के कारण। तो बड़ा कंबल था, सेट हो सकता था दोनों के लिए। उसने कहा महात्मा थोड़ी मदद करेंगे, बहुत ठंड लग रही, मर जाऊंगा इलाहाबाद आते आते में, गंगा में शरीर नहीं जाएगा, लाश जाएगा। तो प्रभुपाद ने एक धागा कंबल से तोड़ा, बोले ये लो ओढ़ लो। बोले आप साधु होके भी मजाक करते हो हम लोगों के साथ, मैं ऐसे ही ठंड से मर रहा हूं। प्रभुपाद ने कहा नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप तो कह रहे थे सब है, ये भी कंबल है, ये भी कंबल है। बोले ये कंबल नहीं, एक धागा है और आपने ओढ़ा है वो कंबल है। बोले नहीं वो तो मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हो कि ये भी कंबल, आपकी आपके सिद्धांत के अनुसार ये भी कंबल, ये भी कंबल। बोले नहीं नहीं कब, आप मजाक मत करिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा मजाक तो आप दुनिया की कर रहे हो, भगवान की कर रहे हो। ये धागों से ही कंबल बना है, लेकिन कंबल में और धागा में अंतर यह है कि ये कंबल गर्मी दे सकता है, ठंडी दूर कर सकता है, ये धागा नहीं कर सकता। ऐसे ही हम जीव है, जो भगवान कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। और आप कहते सब भगवान सब ब्रह्म। महात्मा प्रवचन आप हम गंगा में जाके सुनेंगे, अभी उठा दो बस। बहुत बड़ा एक सिद्धांत मायावाद का खंडन किया जा रहा है निमाय का, 3 महीने में 4 महीने में ये माटी खाकर। और कृष्ण भी वहां यही करते थे। अरे लाला, माता यशोदा कहती थी तू ऐसा क्यों कर रहा है, माटी खाना, चोरी करना, ये करना। तू जानता है सज्जन पुरुष उसे कहते हैं कि ये सब खेल कूद कर कुछ पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। तो कृष्ण कहते थे शास्त्र पढ़ के सत्संग करके क्या मिलेगा, अरे उससे तुम विद्या मिलेगा, तुमको पंडित बनोगे। पंडित बन के विद्या लेके क्या करना है, विद्या सा विमुक्त है, उससे तुम मुक्त हो जाओगे। माता यशोदा कहती थोड़ा पढ़ लिख लो, मुक्त हो जाओगे विद्या से। तो कृष्ण कहते थे मुझे विद्या से मुक्त हूं, मुझे एक माखन का लौंदा दे दे, उसी से मैं मुक्त हो जाऊंगा। क्योंकि यशोदा को तो मालूम नहीं सबको मुक्ति ये देता है, इसको क्या मुक्ति की जरूरत है, ये तो प्रेम के लिए यहां आया है। ऐसे यहां निमाय कह रहा है। तब माता यशोदा ने समझाया ना कि माटी माटी है लेकिन फर्क भी है, वो माटी जो काम करती है नहीं करती। ऐसे ही जीव ब्रह्म एक है लेकिन अंतर भी है, इसी को अचिंत्य भेद भी है और अभेद भी है। सिद्धांत जो आगे जाकर बोलना है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप यही कर रहा है। और एक लीला तो ऐसी है, एक भगत थे मुरारी गुप्त, ऐसे हनुमान जी के अंश अवतार थे, लेकिन उसको किसी साधु ने यही पकड़ा दिया था सब ब्रह्म है सब ब्रह्म है। तो बढ़िया सुंदर 32 भात का भोजन लेके बना के खा रहे थे, निमाय छोटे से थे, चलते चलते गए 1.5-2 साल के, और सीधा उसकी थाली में जगन्नाथ मिश्र का लड़का बुद्धि नहीं तेरे को, हम खा रहे उसमें सुसु करता। बोले क्या हो गया हमारा, आप कह रहे हो ब्रह्म है सब ब्रह्म है, मैंने सोचा मेरा ये भी ब्रह्म है पियो। इतना 1.5 साल का लड़का भरोसा नहीं, इस तरह प्रैक्टिकल सुधार रहा है सबको। बोले आप कह रहे हो सब ब्रह्म है तो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, आप ये भी जैसे ये खीर स्वीट राइस है ऐसे ये भी है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु तो वास्तव में ब्रह्म बता, वहां तो कुछ है नहीं, तो सच्चिदानंद विग्रह है, लेकिन बिल्कुल ऐसी मनुष्य लीला करते हैं। कृष्ण भी ऐसा करते थे, ये भागवत में लिखा है लेकिन ये हम सब बताते नहीं ना, शर्म आती है। तो कृष्ण तो थोड़ा एक काम हटके करते थे। लेकिन एक प्रश्न किया गया हमारे आचार्य, आप तो कहते हो कि कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है, चैतन्य महाप्रभु भगवान सच, उसमें तो हाड़ मास मल मूत्र है नहीं, कहां से आ गया? प्रश्न होना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति को, है ना? भगवान बिल्कुल योग माया से अधिभूत होकर ये करते थे, क्योंकि माता यशोदा उसे भगवान नहीं मानती, सची उसे भगवान नहीं मानती, अपना पुत्र मानती है, लाल मानती है, और दूसरे मनुष्य की तरह गोपाल मानती है। और ये अगर ऐसा ना करे तो डॉक्टर के पास ले जाएगी, कहा ना कह क्योंकि वो थोड़ी जानती कि परब्रह्म सच्चिदानंद है, इसको इसकी जरूरत नहीं। इसलिए भगवान करते थे लीला, क्योंकि सामान्य मनुष्य की तरह, लेकिन काम देखो अलौकिक। और इसीलिए पुण्य पुण्य श्लोक चार व्यक्ति के लिए भगवान वेदव्यास ने पुण्य श्लोक टाइटल दिया है, पुण्य श्लोक। राजा नल के लिए महाभारत में, कृष्ण तो है ही है पुण्य श्लोक, और युधिष्ठिर धर्मराज पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदोस अन्यवाये मलस्येव चंदनम, कुंती जैसे बोलती है ना ऐसे ही। और पुण्य श्लोक किसे कहते हैं, जिसमें मल मूत्र न हो जिनके शरीर में। एक पुण्य श्लोक के चार गुण है, उसमें एक गुण है, ऐसे ही टाइटल नहीं मिल जाता पुण्य श्लोक, नहीं तो कहेंगे कल हम भी लगाएंगे। उसमें एक गुण है जो मल मूत्रादि रहितम पुण्य श्लोकस्य उच्यते, जिसमें मल मूत्र नहीं है उसको पुण्य श्लोक कहते हैं। तो भगवान में नहीं है, लेकिन भगवान मनुष्य लीला करते हैं। पितामह भीष्म कह रहे हैं कि विलसी कवच को मैंने तोड़ दिया, तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर में पसीने की बूंदे आ गई अपने अर्जुन का रथ चलाते हुए। और मेरे कवच, जब अर्जुन की रक्षा के लिए बाण मारता था, कवच टूटता था, तो कृष्ण को कुछ खून की बूंदे भी आ जाती। अरे उसमें तो है ही नहीं पसीना खून, सब मनुष्य की तरह, कहां से आ गया, प्रश्न वहां भी किया जा सकता है। लेकिन ये भगवान की लीला है। आज इसी भेद को हमें समझना है भक्तों, कि कैसे है ये, एक तरफ तत्व है एक तरफ लीला है। स्वरूप से सच्चिदानंद है, जड़ कुछ भी नहीं, पृथ्वी जल वायु अग्नि का कोई विकार नहीं, और दूसरी तरफ लीलाओं में यही तो प्रदर्शन करते हैं। तो फिर मुह्यन्ति यत सूरया, इसीलिए तो बड़े बड़े सूरमा भी मोहित हो जाते हैं। और ये बात पितामह भीष्म ने भी कहा कि तुम क्या समझ रहे, तुम्हारे मामा का लड़का है, मामा बना रहा है तुमको, सबको, पूरे विश्व का बाप है ये, एष नारायण, ये नारायण है, इसकी महिमा तो शिव जानते हैं, कपिल जानते हैं। पितामह ने स्तुति करने से पहले भागवत पढ़िए, बोला ये सारी बातें, और ये तुम्हारे साथ रहा फिर भी तुम विपत्ति में, हमको भी समझ में नहीं आ रहा इसकी लीला, और आज देखो अंतिम समय में मेरे सामने आ गए। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, महाजन होते हैं, वो समझते हैं इन सारी, बाकी तो भगवान घुमाते हैं सबका दिमाग, उसकी माया सबको घुमा रही है। भक्तों के अधीन है, प्रेम के अधीन है, विश्व के सम्राट है, नहीं तो वो अधिपति है, घुमाया। ये इतना सुंदर सिंगार किया था ना निमाय को, दो चोर वहां से निकले, बोले अरे इतना सुंदर लाला खेल रहा है, उसको कहा इधर आ, इधर आ बेटा इधर आ, और एक पेड़ा निकाला उसको दिया, ये लो चॉकलेट खाएगा, पेड़ा खाएगा। तो निमाय तो क्या है, गया गोते बोलते इधर आ, इधर बड़ा सुंदर है, और उठाया गोद में। तो दूसरा जो उसका साथी था, दोनों डाकू चोर थे, बोले उठाओ इसको ले, बोलो कहां, मम्मी के घर जाओगे, पापा के घर, चलो छोड़ देते तुमको। निमाय के हाँ चलो चलो, निमाय ने सोचा फ्री में ही हमको गोद में ले रहा है, चलो ऐसे भी मैं नदिया घूम लेता हूं, मुंबई दर्शन ऐसे ही चढ़ा रहा है। लेकिन ये सोच रहे थे कि इनके ऊपर जो सुंदर सुंदर आभूषण है ना, बढ़िया है, जीवन भर की कमाई हो जाएगी, इसको कहीं दूर ले जाते हैं उठा के, और ये सब आभूषण निकाल लेंगे, छोड़ देंगे, लड़का है इसको क्या मालूम। और धीरे से अपने कंधे पे चढ़ाया, कंधा यहाँ होता ना, बिठाया ऐसे, बैठते ना लड़का, पहले दादा लोग बिठाते थे ऐसे, यहाँ पर चोरे चोरे मदानिया ना खेल थाता था, अने तीजी पेड़ी खंभे तेड़ी भाभा जोवा जाता था, तीजी पेड़ी छोकरा छोकरा आया वो गुजराती मकेस बाबा जाता था, ऐसे बिठाते हैं वो। इसलिए
जो दादा को दिखता है ना लड़के को उससे एक फुट ऊपर दिखता है, क्योंकि ऊपर हो गया है छोटा है, लेकिन क्योंकि उसको कंधे पे चढ़ा है दादा की कृपा से। दादा को तो जो यहाँ आंखें है तो इतना दिखेगा उससे ऊपर, लेकिन ये तो ऊपर है ना उसका मुंह, इसलिए उसको ज्यादा दिखता है। इसी तरह कोई गुरु हमें कंधे पर चढ़ाए तो शिष्य को गुरु से भी ज्यादा दिखता है, ये कृपा है उनकी। कृपा करके गुरु चढ़ा देते हैं, आगे ले जाते हैं, अपने शिष्य को महान बना देते हैं, कृपा के वशीभूत हो गए। प्रभुपाद ये स्वीकार, प्रभुपाद के शिष्यों भी ये मानते हैं। और आज प्रभुपाद के शिष्यों के शिष्यों को आप देखो, ये बस यही कृपा, ये दादा, क्योंकि प्रभुपाद भी हमारे दादा गुरु ही तो लगते हैं ना। आध्यात्मिक संबंध से देखा जाए तो प्रभुपाद क्या है हमारे आपके दादा, आध्यात्मिक पिता गुरु है, तो उस गुरु के भी गुरु क्या हुए, आध्यात्मिक संबंध से दादा। और पिता से भी दादा ज्यादा प्रेम करता, पिता तो कभी कभी, लेकिन दादा कभी नहीं देता क्योंकि उसको प्रेम अधिक होता है ना। शो क्या आप गुजराती में मोड़ी करता व्याज वालो भाई ने तो एक बात याद आ गई प्रभुपाद, मैं कभी कहा हूं शायद, यहां स्मरण आ रहा है, आप प्रभुपाद की इस पावन परंपरा में शुद्ध भक्ति हमें सीखना है, बिल्कुल रामायण गीता भागवत में जो चरित्र है ना भक्तों के, ऐसी ऐसी भक्ति, क्योंकि कलयुग ऐसा है ना कि भक्ति के नाम भी नाम पर भी नाटक कराता है, पाखंड कराता है, इसलिए कलयुग के शिकार नहीं होना हमको, शुद्ध भक्ति करना है। इसलिए ऐसे संतों की कृपा, उनकी सेवा करके हमें अपनी ओर बढ़ानी है, नहीं तो बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान भी फंस जाते हैं। रूप का जितना अभिमान धन का या पद का नहीं होता ना, उससे सबसे बढ़कर ज्ञान का होता है, और अभिमान तो विनाश कराता है। इसलिए कृपा का एहसास होना चाहिए कि हम जो भी है किसी की कृपा से है। करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण न राखिबो आर गुरुदेव कृपा बिंदु दिया देह ये दासे तृण प्रेक्षा अति हीन। घास के तिनके से भी मैं हीन मानू अपने आप को, ऐसी सन्मति दो हमें, जो भी हूं आपसे हूं। योग्यता विचारे किछु नाही पाई तोमार करुणा सार, तोमार करुणा सार, आपकी करुणा है हमारी क्या योग्यता है, आप अपना बना लो काम हो गया हमारा। प्रभुपाद को कुछ विदेशी शिष्यों ने कहा एक दिन, प्रभुपाद आपने हम पर बहुत कृपा किया, कृष्ण प्रेम भक्ति का धन आपने हमारे गांव में हमारे विदेशों में आकर और इतना कष्ट तप सहके हमको दे दिया, अब हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। प्रभुपाद ने कहा क्या करना चाहते हैं, बोले आपने सुनाया था और श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में थे, द्वारिकाधीश बनकर लीला करते थे, तो द्वारिका में एक बड़ी सुंदर सभा थी जिनका नाम था सुधर्मा सभा। क्या नाम था, सुधर्मा सभा, नाम सुने हैं ना आप लोग, कितने लोग सुने हैं, नहीं सुने हैं आज तक, सुधर्मा नाम का कोई सभा होता है, नहीं सुने, अच्छा तो गुजराती नहीं हो भाई, गुजराती ने बेवस्तु खबर हो जाए, द्वारका में सुधर्मा सभा ने डाकोर में कौन से, ये तो खबर है ना, तो गुजराती सो चलो बेमती एक 50% के पास से धन्यवाद प्रभु जी, अमेरिका से आए हैं हमारे साम बीच में है, नवदीप मंडल परिक्रमा में आए थे, तो उनसे मित्रता हो गई प्रेम, तो आप पास हो कोई चिंता नहीं है, राजा रण छोड़ को जानते हो तो। अच्छा प्रभुपद आपके लिए कुछ करना चाहते हैं हम, बताओ क्या करें, आजकल का कोई गुरु होता तो लखाई भी लेत, हर ही शीश धन शोक न हर ही, गुरु शिष्य का शोक हरता है, धन नहीं, धन तो भगवान से प्रार्थना करता है कि इनको खूब देना। हाँ तो एना लीधे आश्रम मांगता हो वाटे हो पूर्णिमा दी तैयार थे बैठा है, कौन आवे कौन आवे, कौन कौन से कौन कौन मुर्गा बना दिया। बोले क्या बनाना, क्या देना चाहते हो, क्या दे सकते हो आप और हम, दे भी क्या सकते। बोले सुधर्मा सभा में हमने सुना है कि प्योर गोल्ड के महल थे और खंभे थे और उसमें सुंदर सुंदर रत्न मणियों के झड़े हुए डिजाइनिंग था। आपके लिए एक सोने का कमरा जिसमें मणि लगा हुआ ऐसा बनाना चाहते हैं। सुधर्मा सभा में ऐसा था कृष्ण के लिए, गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, कृष्ण से अभिन्न साक्षात हरि, तो कुछ तो करे आपके लिए हम, अच्छा भाव है। आजकल कैसे शिष्यों को भी नहीं हो सकता। सुधर्मा सभा की एक विशेषता है कि कोई भी बूढ़ा व्यक्ति उसमें जाता था ना, जवान होके आता था। बोलो आज होती तो ब्यूटी पार्लर बता बंद, जवान होके आता था ऐसा लिखा। इस कथा को महाराज बोलते हैं कभी अवसर नहीं मिलता है, मैं ढूंढ रहा हूं, अगर कोई ऐसा बोले ना तो उसको एक प्रश्न करना है कि तो आज दादा घरे जाए दादी मैं हूं कहता था, कारण कि जुवान थी गया बदले तुम्हारे दादा आ सोखठा वाला ने हसा दांत के दे गया। बोले सुधर्मा सभा में जो भी जाता था सुखदेव जी कहते जवान हो जाता था फ्रेश एकदम। और दूसरा ऐसा ही खतरनाक बात भीष्म पितामह के पिताजी शांतनु के विषय में लिखा है, शांतनु जिसको भी छूते थे ना जीर्णता यौवनम गतो, वो बूढ़ा जवान हो जाता था। शांतनु महाराज है ना भीष्म के पिता, उस शांतनु महाराज के कर में हाथ में ऐसी शक्ति थी जिसको भी छूते थे वो बूढ़ा व्यक्ति क्या हो जाता था, जवान हो जाता था। भागवत में लिखा है व्यास जी ने नवम स्कंद में 22वें अध्याय में। आज कहीं शांतनु बस अठवाडियों माटे सूरत में आवी जाए ने, बद्दा ना हांदा दुखता बन। कितना पावर था शांतनु में, क्यों था पता है, क्योंकि बिहारी जी के भक्त थे मुरली वाले के, मुरली वालों के भक्तों में यह शक्ति होती है। जो बोल दिया भीष्म को कि जब तक तुम्हें चाहो नहीं इच्छा न हो तब तक यमराज मृत्यु तुझे छू नहीं सकती, ये कोई सामान्य बाप नहीं ऐसा बोलना, तुम क्या जोलो बोलो एक दिन वेलो भी जाएगा कदाचित तुम्हारा क्या बात है। बोल भी दोगे तो होगा क्या बताओ। लेकिन भीष्म ने बोल दिया बेटा देवव्रत तुमने हमारे लिए जो किया है मैं इतना प्रसन्न हूं, हृदय से तुमको आशीर्वाद देता हूं कि जब तक तुम चाहो नहीं तब तक तुम मरोगे नहीं। और ये हो गया भीष्म जब तक चाहे, क्योंकि अगर देखो पिता उसके पास होगा तब देगा ना, उसके पास तप का बल था तब दे पाया ना, नहीं तो कैसे दे पाते बताओ। और ऐसा जिसका सामर्थ हो तभी तो गंगा उसकी पत्नी बनने के लिए तैयार होती है ना, ये सब बड़े हाई कैरेक्टर है। इसलिए आप अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो तो ऐसे पवित्र पुरुषों के चरित्र सुनो, पावर आएगा कुछ। उतरी गेला नू धांबळशो दस का बस, कुछ तूफानी करते हैं हूँ तूफानी करे दस मा हूँ तूफानी था केटलाइन तोड़ी नहीं किया हमने, ये पीतो न पस करोड़ों लाइन देखते हैं ना आप लोग, दुनिया समझती नहीं है क्या है वास्तविकता, जिसके खान पान का कोई भरोसा नहीं, जिनके चरित्र का कोई भरोसा नहीं। कला का आदर है भक्तों लेकिन आदर्श नहीं बन सकते वो हमारे, और ये लोग हमें इसका फैन हूं बोलो ओलख तो नित्य में काणे कौन आवन मैं आनु फैन सुन ले हूं थे जा है पण तारू फैन थे क्या मिलेगा बताओ। फैन बनना है तो मुरली वालों के बनो बेड़ा पार हो जाएगा। और असली फ्रेंड यही है, कहते हैं गीता में सुयदम सर्वभूतानाम, अर्जुन मैं हूं तुम्हारा मित्र। और अर्जुन ने बनाया सखा मित्र, ले गया महाभारत से पार अर्जुन को, भीष्म द्रोण भी जिसका बाल बांका नहीं कर सके, इसको मित्र कहते हैं ना। ये क्या करेंगे फैन बन गया हमारा, इसलिए उल्लू मत बनो, आदर करो किसी की कला का, गान का, उसको इन्हें मानो, एनो ही वांधो नहीं, जानो एनो ही वांधो नहीं, होका नहीं बनो। आदर तो सबका है हमारे लिए, किसी के पास भगवान ने कुछ दिया है, कुछ दिया है, ओके, लेकिन जो पूर्ण होगा वही हमारा आदर्श होगा। सुखदेव जी हमारे हीरो है, जिसने भागवत दिया, उसकी शरण में जाएंगे तो कुछ पाएंगे ना आप और हम, नहीं तो क्या मिलेगा इन लोगों के पीछे, केवल पैसे के पीछे ये लोग पागल होकर कुछ भी उटपटान करते हैं और पूरे संसार को उसी में चढ़ा देते, और वो खुद तो चढ़ते नहीं। इसलिए पीना भी हो तो कुछ अच्छे आइटम पीना, जिससे शरीर भी स्वस्थ हो और दूसरों को भी कुछ हित कल्याण हो, भारत के छोटे लोगों का भी उद्धार हो। ये भी संदेश है, सब जगह संदेश ही संदेश है। घुमाया, बोले इसको उठा के ले जाते, सारे सारे चोर समझ रहे हैं कि इस निमाई के अंदर सुंदर सुंदर गहना है, तो इस गहने पर हमको याद आ गया था प्रभुपाद का वो लीला। आपके लिए बनाते हैं सुंदर से सुंदर महल, प्रभुपाद ने जो उत्तर दिया है ना भक्तों, सुवर्ण के अक्षर से लिखने लायक है। सारे शिष्यों ने कहा कि हम आपके लिए सोने का महल बनाएंगे जिसमें मणियां लगी हो, क्योंकि आपने हमारे लिए जो किया है और जो गुरु कृष्ण भक्ति का ज्ञान देता है, पूरा पृथ्वी बेचकर भी उसका ऋण नहीं चुकाया जा सकता। यद दत्वाम, गुरु जो देता है, पृथ्व्याम द्रव्यम नास्ति, पृथ्वी में कोई ऐसा पदार्थ नहीं जिसको देखे आप कृष्ण भक्ति विज्ञान देने वाले वैष्णव गुरु के ऋण से उऋण हो जाओ। फिर भी हम कुछ करना चाहते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो करे आपके लिए, कुछ नहीं करना उससे कुछ तो करे। प्रभुपाद ने कहा, क्या बोला, मेरे लिए सोने का महल उसमें मणि रत्न जड़े देना चाहते हो, सुनो आप सब वैष्णव ही मेरे असली रत्न हो, मुझे वो रत्न की जरूरत, वो पत्थर के दीवाल और उस धातु रत्न की मुझे जरूरत नहीं, आप जो जप कर रहे हो, गीता पढ़ रहे हो और कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हो, आप सभी वैष्णव ही मेरे असली ज्वेल, असली मणि हो, कोहिनूर हो, और ये मणि तो कुछ क्षेत्र में कुछ जगह को आलोकित प्रकाशित करेंगे, लेकिन आप वैष्णव अगर शुद्ध भक्ति करोगे तो पूरे विश्व में उजाला करोगे। इसलिए वैष्णव ही हमारे रत्न, जे जन गौरांग भजे से ही अमार प्राण। हमारी स्थिति प्रभुपाद ने बहुत ऊंची कर दी है, बस अब गिराना नहीं है अपने आप को, और ऊंचा उठना है, और ऐसे ऊंचा उठने के लिए ऊंचा चरित्र सुनना पड़ेगा। जितने भी महान ऊंचे उठे हुए महापुरुष है ना, चाहे वो इतिहास में आप देखो, क्षत्रिय क्षेत्र में, चाहे ऋषि क्षेत्र में, देव क्षेत्र में, मनुष्य क्षेत्र में, ये सब समाज, उसमें जो भी कुछ ऊपर उठे हैं, ऊंचा चरित्र सुन के, ऊंचा संग करके, और ये माता पिता का भी कर्तव्य है या मित्रों का भी धर्म है। शिवाजी महाराज इतने चमत्कारी, इतने इतने वीर थे, क्योंकि माता जीजाबाई उसको क्या सुनाती थी, शोले के डायलॉग क्या सुनाती थी बताओ, राम लक्ष्मण की बात। शिवाजी सोते सोते भी सोने से पहले राम कृष्ण की बात अपनी माता से सुनते थे, भगवान कृष्ण स्वयं सुनते थे यशोदा से रामचरित्र, नींद नहीं आती थी, यशोदा कहती सुनो सुनो एक राजा हो गए राम, अच्छा दशरथ जी के पुत्र थे, उसके एक छोटा भाई का नाम था लक्ष्मण, बलराम जी बाजू में सोए, माता यशोदा कहता है कृष्ण बड़े चाव से सुनते थे, प्रेम से सुनते थे, हमारी तरह सोते नहीं थे, सुनते थे पहले। और क्या हुआ, राम की एक विवाह हुआ जनकपुर की सुंदर जानकी से, और फिर वनवास, कथा कहते कहते बोले ले गया रावण, तब तक तो इसको रामावेश भी आ जाता है, ऐसे सुने हैं ना आप लोग भक्तों से चरित्र, ऐसे पावन चरित्र सुनने से ऊंचा उठाया जाता है, और इसलिए शिवाजी में वीरता थी, विद्वता थी। तो ये माता पिता का धर्म है, कर्म है,
बोला गया है ना इसीलिए शास्त्रों में।
पारणे पोढ़ी ने सांभळता ता शिवाराम लखमण निवा,
राम लक्ष्मण की कथा सुनते थे इसलिए संस्कार थे तो वो याद आ गया। एक संत कहीं रास्ते से जा रहे थे, भजन करने वाले साधु माला लेके, और एक बढ़िया सा पत्थर घूमता हुआ आया सर पे, थोड़ा सा रह गया, कौन मारा अटारी में देखा एक छोटा सा लड़का था, वो बोले जाके बोले तुम्हारे बाप तुम कैसा लड़का है, ये पत्थर देखो थोड़ो रही गयो, ये मारो न हो नकर आंटी गयो हो, बोलो कितलो कॉन्फिडेंस है ना पुत्र, મારા છોકરા એનો માર્યો, કારણ કે મારો હોય તો તેમ હોસ્પિટલમાં હોય ત્યાં, તાકે પણ આવ્યો અહીંથી તે, તાકે એ અમારો ભાણો, આ બેન આવી છે ને મામા મહિનામાં, એનો આ સુકી જાય છે, પણ બે મહિના એ રહે એટલે ઈ તે તમારો, બોલો આવા કુળમાં પાતા એવું થાય, બોલો એ દશા હે લોકો, ક્યુકી સંસ્કાર નહીં તો કે તો ક્યાં હોગા। इसीलिए आप चाहते हो कि हमारे पुत्रों का भविष्य उज्जवल मंगलमय बने तो स्वयं को बनाना पड़ेगा पहले। पृथ्वी का हमें आभूषण बनना है भार नहीं, पृथ्वी का हमें तिलक सिंगार बनना है कलंक नहीं। और इसीलिए कृष्ण संकीर्तन और श्रीमद् भागवत रामायण गीता के इस पवित्र चरित्रों का श्रवण कीर्तन हमें शुद्ध कर देगा। चैतन्य महाप्रभु का चरित्र में सुना रहा हूं, लेकिन उस चरित्र का श्रवण करने से जो लाभ मिलने वाला है जो आप और हमको अभी दिखता नहीं। कभी कभी दवाई अंदर जाती है ना, अभी नहीं दिख रही लेकिन वो अंदर काम वो करती है बाद में, त्यारे त्यारे थोड़ो हो जी जाए कि हो जो उतरी जाए वार लगे, जब जाएगा अंदर टॉनिक ना अंदर से सफाई होता है। ये कृष्ण कथा प्रेम औषधि है, इसका प्रभाव कभी मिथ्या नहीं जाता। साचारे सभी चोर सोच रहे कि बढ़िया माल हाथ में आया है आभूषण उतार लेंगे, आभूषण के दीवाने थे, लेकिन हुआ क्या, निमाई पंडित सर पर बैठे हैं कंधे पर, और ये कंधे पर निमाई को लेके घूम रहे थे, इसलिए मैं आपको थोड़ा घुमाया दादा के इधर से। निमाई को बड़ा आनंद आ रहा, और ये चोर सोच रहे अभी बस जंगल में थोड़ा दूर घर से इधर, क्योंकि नवदीप बहुत बड़ा था उस समय और लाखों हजारों लोग रहते थे, इस गली से घुमा रहे, इसको लगा कि अब हम बहुत दूर आ गए, और इधर क्या हुआ, निमाई कहाँ गया, अरे अभी तो खेल रहा था जगन्नाथ मिश्र सची सब दुखी, निमाई कहाँ, सब ढूंढ रहे कहाँ गया लड़का, और उधर ये लोग चोर लोग उसको घुमा रहे, लेकिन निमाई सर पर बैठे थे, सर पर हाथ रख के इन चोरों का घुमाया उसने दिमाग, तो घूम फिर के जहां जगन्नाथ मिश्र का घर था ना वहीं ये पहुंचे। ये लोग रहे समझ रहे थे कि बस हमें तो सूरत भोगी गया, पर नहीं वो उधर ही थे नवदीप में घूम के वहीं पहुंचे, उसको लगा अभी बहुत दूर आ गए, उतारो इसको और इसकी सब आभूषण गहने भी उतारो, और जैसे ही नीचे उतारा तो चोर कुछ नहीं, वो तो आभूषण देख रहे, निमाई को देख रहे, पर दोनों आभूषण है, आभूषण जिसने पहना है वो खुद एक आभूषण है भाई, वो खुद एक रत्न है, ये तो दोनों देख रहा है, और देखते नीचे उतार के बोले हाँ निमाय इधर आओ अब लेने जा रहे, तब तक तो जगन्नाथ मिश्र, अरे निमाय कहाँ गया था, क्या ले ये रेनु घर, सब जो ढूंढ उसको पता ही नहीं चोरों को कि मैं उसके घर के लेके आया, तब तक ये लोग बोले अरे आप लोग कौन हो, महान देवता हो, कब से हम ढूंढ रहे, अच्छा है कि आप हमारे लड़के को वापस लाए, ए, इसको इनाम दो। वो सब चोर सोच रहे कि भागो यहां से नहीं तो पड़ेगा, क्योंकि लड़का अभी बोल सकता है कि ये लोग मेरे को घुमा रहे थे लेकिन मैंने घूमने नहीं दिया इनका घुमाया। जगन्नाथ मिश्र ने कहा एक बढ़िया से पगड़ी लेके आओ, हम इन दोनों महात्माओं के ऊपर बांधेंगे और उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि इसने हमारे लाला की लाज रखी बचाया। और सब अंदर लेने गए और कुछ लोग निमाई को दे रहे, निमाई कहां चला गया था, बोले मैं तो घूम रहा था, ये दोनों महात्मा हमको बढ़िया से बहुत घुमाए। तब तक तो ये दोनों पलायन हो गए, दौड़ने लगे, कुछ स्वागत तो करना नहीं था, बोले मार न पड़े तो ही अच्छा है, और दौड़ते दौड़ते गली चेंज होके दोनों सांस लेते हुए कहते भाई माँ चंडी ना आशीर्वाद फैला, नहीं तो प्लेनर के देने पड़ जाते इधर। तेरे को बोलना चाहिए ना कि इसका घर आ गया। बोले मुझे को क्या मालूम, मैं तो सोच रहा था हमारा घर है, तो उसके घर में कैसे पहुंच गए। दोनों चुत रहे लेकिन सोचे बाद में, ये कुछ भी हुआ माता जी ने कृपा से भाई, नहीं तो आज मरते थे। भगवान चैतन्य ने, चैतन्य को लूटने के लिए इन चोरों ने इसको चर पर चढ़ाया। लेकिन हमारे वृंदावन दास ठाकुर इस लीला पर एक बात लिखते हैं कि परमार्थ है दो ही चोर महाभाग्यवान। कुछ भी कहो यार, फिर भी ये चोर महाभाग्यवान थे कि निमाय को छुए देखे नहीं, सर पे चढ़ाए और यात्रा कर दिए पूरे नवदीप धाम की। काम गलत करने गए लेकिन भगवान के साथ होने से मंगल ही मंगल हो गया। नारायण अनंत से स्वयं चाहते कि प्रभु हम पर शया करे, शैया करे या बैठे। भगवान चले जाते अवतार लेने लेने तो कभी कभी नहीं करते, लेकिन ये दोनों चोर इन सबसे भाग्यवान है कि ये कर रहे हैं, ये सौभाग्य इसको दिया। चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं में भी तत्व सिद्धांत के साथ रस भी था, आनंद भी था, और तोड़फोड़ भी इतनी करते थे, शरारत भी इतनी करते थे। लेकिन हमें एक ही बात आप लोगों को इन बाल लीलाओं के सिद्धांत सार में समझानी है कि कृष्ण भी करते थे तोड़फोड़ चोरी वोरी सब, लेकिन वहां उसको दंड मिलता था और यहां सची माता निमाय को कभी बांधना, ताड़ना, मारना कोई दंड नहीं। तो देखो वृंदावन में और नवदीप मायापुर में कोई अंतर नहीं, कृष्ण में, चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं, लेकिन एक बड़ा अंतर कि आप वृंदावन जाओगे, कृष्ण भजन करोगे, फिर भी अपराध होगा तो पूर्ण फल नहीं मिलेगा, लेकिन नवदीप में गौरांग संकीर्तन करोगे तो अपराध का कोई वैल्यू नहीं, अपराध होते हुए भी माफ हो जाएंगे और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो गौर नाम लिए अपराध नहीं, क्योंकि गौरांग को भी यहां कोई दंड मिला, क्योंकि ये नवदीप औदार्य का भूमि है। इसलिए भक्तों नवदीप में और वृंदावन में कभी भेद नहीं करना। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो वृंदावन को और नवदीप मायापुर को अलग समझता है, अंतर करता है तत्व से, तो अपराधी है, धाम अपराधी। और धाम अपराधी पर धाम की कृपा नहीं होती, धाम भगवान का स्वरूप है, नाम रूप लीला धाम एक तत्व है। और इस बात को तो हमारे नरोत्तम दास ठाकुर ने कह दिया, श्री गौरा मंडल भूमि ये बाजान चिंतामणि तारहय व्रज भूमेवा। वास्तव में आप वृंदावन रास रस चाहते हो तो पहले आपको वाया नवदीप करना पड़ेगा, क्योंकि आप में जो अपराध और पाप है उसको ये भूमि नवदीप और ये चैतन्य की कृपा साफ कर देगी, और वे चैतन्य आपको श्री कृष्ण प्रेम वृंदावन रस में पहुंचा देंगे। जो गौर मंडल भूमि है और मायापुरे वसेत यस्तु करे तस्य व्रजस्थिति, जो मायापुर दर्शन करके यात्रा करके चैतन्य महाप्रभु की शरण लेता है, वृंदावन तो उसके बाएं हाथ में है, कृपा से तुरंत मिल जाएगा। लेकिन बिना इसको छोड़ के गया तो रिस्क है। क्यों? क्योंकि हम में पाप अपराध वासनाओं की कमी नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद के द्वारा स्थापित इस संस्था में जो वृंदावन ले जाने की विधि है ये विशेष है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के साथ शुद्धता के साथ यात्रा, और श्री कृष्ण स्वयं है। हमको श्रीमान वृंदावन प्रभु जी आपके सूरत के अध्यक्ष मिलने आए तो निवेदन कर रहे थे कि हमारे सूरत मंदिर में नीचे गौर लीला है, वो जो एग्जीबिशन हॉल है ना मंदिर के सामने, उसमें मैं तो नहीं गया, बहुत साल पहले गया था लेकिन अभी मुझे कुछ भी स्मरण नहीं, क्योंकि मैं कितने सालों से नहीं गया, लेकिन आप तो शायद देखे गए होंगे अपने मंदिर में, है ना, नीचे चैतन्य महाप्रभु की सब लीलाएं का बनाया हुआ है, और उसमें जो लीला है उसका नाम भी लिखा है। तो निवेदन कर रहे थे कि जिससे हमने बनाया वो फिर चले गए तो नाम नहीं लिखा गया, तो फिर हमने जो सुना पढ़ा उस अनुसार देखा कि हाँ ये लीला है, ये चैतन्य महाप्रभु की सार्वभौम के साथ ये लीला, रामानंद राय के साथ ये रूप दिखाया। तो एक एक रूप ऐसा है कि
चैतन्य महाप्रभु खड़े, एक तरफ कृष्ण खड़े, एक तरफ बीच में ब्राह्मण खड़ा, हम ये क्या है, एक इसके पीछे क्या है, आप देखिएगा। मैं तो अभी भी नहीं गया, मतलब मैं जाऊंगा, लेकिन तो अभी मैं जो ये लीला स्मरण कर रहा हूं उससे मुझे लगता है कि यही लीला होगी अभी वो जो बता रहे थे उस अनुसार। क्योंकि एक अतिथि ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र के घर आया यात्रा करते करते, साथ में गोपाल जी रखता था छोटा झोली में। और ब्राह्मण पहले इतने शुद्ध होते थे कि सीधा सामग्री शुद्ध ब्राह्मण से लेकर खुद पकाते थे, शुद्धता को पालन करते। और जगन्नाथ मिश्र से कहे तो बढ़िया, जगन्नाथ मिश्र संस्कार तो है ही है, विश्वामित्र गए तो जैसे दशरथ महाराज ने स्वागत किया साधुओं का, ये ऋषि मुनियों की परंपरा में राजाओं लोगों से स्वागत करते थे, किया। बोले महाराज भोजन हमारे घर का करिए, आज के दिन हमारा भाग्य होगा, ऐसा कहा तो स्वीकार किया वो अतिथि ब्राह्मण। तब जगन्नाथ मिश्र ने सीधा सामग्री दिया, बड़ी शुद्धता से पानी डाल के सफाई डाल के इसने किया, और जैसे ही भोग तैयार हुआ तुलसी पत्र डाला, बोले हे गोपाल जी कृपा करके हमारे भोग को स्वीकार करने आइए। बोलते ही ये तीन चार चाल के लड़के निमाई पंडित घूमते घूमते आए और सीधा ही महाप्रसादे लगे खाने। तब तो ये देखा हलचल, ए लड़का अभी झूठ, क्योंकि भगवान को अभी भोग निकल गया और ये खा रहा है। वो ब्राह्मण ने कहा कौन है ये लड़का, क्यों खा रहा है? तब तक तो आ गए जगन्नाथ मिश्र सची माता सब देखते, ए निमा ऐसा करते है क्या, तुमको बुद्धि नहीं है? ये ब्राह्मण बेचारा इतना मेहनत करके शुद्ध से जम तैयार किया भोग और तू खा रहा है, चल हटा। और जगन्नाथ मिश्र तो इतना गुस्सा हुए, जगन्नाथ मिश्र कभी कभी इतना गुस्सा होते तो पिटाई करने का मूड हो जाता। ये जो कल वाली लीला में सुनाया ना, वो नदी तट पर वाली वो लड़कियों के साथ, ये जब पता चला तो जगन्नाथ मिश्र लाठी लेके आए, बोले आज अगर हाथ में आया ना दूंगा बढ़िया से। और निमाय को कोई बोल दिया कि तुम्हारे आ रहे पिताजी, तो निमाय घूम के माता के पास, नहीं तो जगन्नाथ मिश्र लाठी लेके चल रहे थे कि आज निमाय को मारना है। और ये हमारे भारत के माता पिता हैं, विदेशों में तो कर नहीं सकते, सू हो जाएगा वहां पिता मारते हैं तो केस हो जाता है, ऐसा सुना है ना, सही है प्रभु जी? वो एक भक्त हमको सुना रहे थे, कौन से देश की बात है पता नहीं, लेकिन आपके यूएसए की कोई कंट्री था, बोल रहे थे कि एक क्या बोलते हैं पोस्टमैन तो कागज देने आया, कुरियर देने, तो वो इतना फ्रेश जो मार्बल था ना अपने घर में इतना स्निग्ध डाला था, तो पोस्टमैन के लेटर देने आया तो चलते चलते आया तो उसमें लिपस गया और गिर गया तो उसकी हड्डी टूट गई। वो केस किया कि ऐसा मार्बल क्यों डाला, बोलो मैं इसलिए गिरा, मैं क्यों तुम्हारा भारत में पेड़ एक मुके बाढ़ तो नहीं थी, केस नहीं बात तो बाजू मार रही केटलो हमड़ा भी तो अलग, बोलो बोले उसको पैसा देना पड़ा इनको, वो केस किया तो बोले मार्बल निकालना पड़ा ऊपर से इसको पैसा देना पड़ा। वो आए हुआ तो सूरत में मतलब बिल्कुल उल्टा नहीं, वहां मार नहीं सकते लेकिन यहां तो डरते हैं, भगवान भी हो तो क्या हो, अपने पिता से डरते हैं, सिखाते हैं शासन। बहुत डांटे निमाय को, निमाय कुछ नहीं बोले, हंस रहा है, प्रसाद तो मुंह में चला ही गया था दो तीन कवल। और इसको छोड़ो सची, इसको ले जाओ। और इसको कहे ब्राह्मण देवता प्लीज क्षमा कर दीजिए, माफ करिए हमारा ये लड़का है बुद्धि नहीं है, लेकिन आप महान हो क्षमा करिए। बोले नहीं नहीं आप चिंता मत करो, अरे बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते, कोई बात नहीं, चिंता नहीं है, अब ये भोग तो नहीं लग सकता और भोग नहीं लगा तो हम भी नहीं खा सकते, और ऐसी भगवान की इच्छा होगी कि आज हमारा उपवास होगा, और ऐसे कई दिन हमारा ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं, आप एकदम सहिष्णु ब्राह्मण सीधे ब्राह्मण थे, कुछ नहीं बोले। तब इसने कहा नहीं महाराज आप हमारे घर में हो और भूखे रहो, साधु भूखा जाए ये तो हमारे कुल परंपरा में कलंक होगा, एक काम करिए मैं फिर से आपको ये सब साफ कर दो, चौका चौकी सब तपेला तपेलू बुधू, और फिर से बनाओ, मैं सीधा फिर से देता हूं, थोड़ा कष्ट होगा एक घंटा लगेगा लेकिन आप भूखे मत सोइए। बहुत अनुनय विनय किया तो फिर इस मान गए कि बोले ठीक है चलो भगवान को भी भूखा नहीं रख, और फिर से बनाया मेहनत करके एक डेढ़ घंटा करके, फिर थाली तैयार किया वही सेम, नमो ब्राह्मण ने देवाय गो ब्राह्मण ने हिताय च, तो निमाई फिर खिलते खिलते पहुंच गए और पहुंच के फिर खाने लगे, फिर ये डांटा, अरे बाप रे राम राम। अब जगन्नाथ मिश्र इतने गर्म थे सती माता सब, और ये ब्राह्मण भी अब बोले अब नहीं बनाएंगे, अब कुछ नहीं हो गया, चलो उपवास आज, अभी लड़के भी मत डांटिए, वो भी मना कर, लेकिन जगन्नाथ फिर डांट रहे, और आप डांटो चाहे नहीं डांटो, लेकिन मैं अब नहीं बनाऊंगा, अब नहीं खाना है। तब तक तो विश्वरूप आ गए, इसके बड़े भाई थे, जगन्नाथ मिश्र से कहते बेटा समझाओ, ब्राह्मण हमारे घर भूखा रहेगा और इसके कारण, निमाई के कारण, नटखट के कारण दोबारा जाके भोग खा लिया, झूठा कर दिया। तो विश्वरूप गए, देखो ब्राह्मण देवता अंतिम बार प्लीज बनाइए आप कृपा करके, और इस बार निमाई का इंतजाम मैं करता हूं, क्या करोगे? बोले हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टोर रूम है, उसमें इसको डालते हैं, बाहर से लॉक करते हैं, अंदर डाल देते हैं, फिर आप जब प्रसाद खा लेंगे ना तब खोलेंगे इसको। और करे तैयार किया, बहुत मेहनत उन्होंने विनय करके तैयार किया और ये बनाए, फिर भोग लगाए, फिर कहते हैं नमो ब्राह्मण देवाय। अब वो ताला बंद था, लॉक था, सब स्त्रियां थी, पंडित थे सब, और निमाई वहां रूम में ब्राह्मण के पहुंच गए, लगे खाने। तो ये फिर ए फिर से आ गया लड़का, तब निमाई ने उसके मुंह में प्रसाद मारा, एक तो बुला रहा है और आता है तो खाने नहीं देता है, ये तीसरी बार में आया, पिता के डर से कुछ बोल नहीं रहा हूं तुमको, गोपाल जी नमो ब्राह्मण देवाय बुलाता है मेरे को और मैं आता हूं तो चिल्लाता है, तो ये ब्राह्मण तो समझ नहीं रहा है क्या, तो मुंह ही बंद कर दिया उसका, ये चिल्लाने जाता कि क्योंकि उसको वो लोग समझ रहे हैं कि ब्राह्मण देवता अंदर भोग लगा रहे, भोग लगाते हुए सब बंद होता है ना रूम पर, ब्राह्मण होता है केवल मंत्र पढ़े, और ये निमाय उधर बंद है, लेकिन अब एक कमरे में दो निमाय वहां से यहाँ पे, तो अंतर्यामी है भगवान है। और ब्राह्मण को कहते हैं कि एक तो बुला रहे हो, ऊपर से डांट खरा रहे हो और प्रसाद तो खिला नहीं रहे हो, तो बुलाते क्यों हो? बोले तुमको कहाँ बुलाया, तो बोले किसको बुलाया, और जब देखा तो वही गौर सुंदर क्या हो गए, मुरली वाले श्याम सुंदर बन गए। तो वो ब्राह्मण तो देखते रह गया, बोले सपना नहीं है ना, ये लड़का भूत क्या है, एकदम कृष्ण रूप बिल्कुल ऐसे थे। और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे और उस रूप में बोल रहे मैं वही कृष्ण हूं, अब गौरा बन के आया हूं और तुम पर स्पेशल कृपा करनी थी, तुम जन्म जन्म से मेरे दास हो, जीवन भर मुझे खिलाए हो, तो मैंने सोचा कि आज असली में जाके खाता हूं, और तू नंद भवन में भी आया था लेकिन तू भूल गया, तो गौर प्रेम भक्ति रस बांटने आया तो मैं तुझे सामने से दे रहा हूं कृपा, और तू एक ही चिल्ला के मुझे ही मार खड़ा रहा था पिता के हाथ में। अब तो वो ब्राह्मण समझ गया, तो देखते ही रहा, स्तुति करने लगा, प्रार्थना करने लगा, तब भगवान चैतन्य ने समझाया कि देखो ये बात बाहर जाके सूरत वालों को कहना नहीं, किसी को नहीं कहना, क्यों क्यों क्यों? बोले मुझे भक्त बन के लीला करना है, भगवान बन के नहीं, बाहर जाके मेरे पिताजी को भी मत बोलना, किसी को बोला ना तो मार दूंगा, आंकड़ा पानी है, अगर तू किसी को भी बोला तो मर जाएगा, मतलब एकदम लास्ट धमकी थी, नहीं तो ये रह नहीं पाएगा, भगत लोग पर कृपा होती है ना, वो लोग बहुत पेपर में देने से रह जाते, बस मने को कल आऊ सपन मने तो आम थी, खुश होते बेचारे, अच्छा है कृपा आती है, तुमको ऐसा साक्षात मिलेगा तो क्यों नहीं बताएगा, लेकिन भगवान चैतन्य ने रोक दिया, क्योंकि लीला कर, किसी को नहीं बताना ये लीला तुम कि मैं कृष्ण हूं, चैतन्य रूप भी दिखाया, कृष्ण रूप दिखाया, ब्राह्मण सोच रहा है क्योंकि पहले लड़के के रूप में देख रहा है और पहले चतुर्भुज के रूप में, द्विभुज रूप में, और कहा तुझे भी कृष्ण प्रेम भक्ति रस जो मैं बांटने आया हूं हरिनाम संकीर्तन, वो अवसर तुझे मिलेगा। अब तो ये प्रसाद थी असली प्रसाद हो गया था, निमाई अंतर ध्यान हो गए, जगन्नाथ मिश्र सोच रहे कि लड़का तो कमरे में और ये ब्राह्मण बड़े प्रेम से खा रहा है, और जैसे ही प्रसाद पाया रोमांच कंपा सुर तरंग भाजो, लगा उठकर नाचने गाने रोने, जगन्नाथ मिश्र ने सोचा कि प्रसाद में गड़बड़ था क्या, पागल क्यों हो गया ये, पहले तो ठीक था, प्रसाद खा के ही कुछ गड़बड़ हो गया इसको, लेकिन ये निमाई का प्रेम प्रसाद पा गया था, और नाचते गाते हुए घर से दूसरे दिन चला गया, लेकिन भगवान निमाई ने कहा था इसलिए किसी को बोला नहीं, लेकिन अब नवदीप छोड़ के भी कहीं गया नहीं, अब तो वो वहीं रहता था, और निमाई की शिशु लीला, बाल लीला, किशोर लीला, पंडित लीला, संकीर्तन लीला को देखता था, और जीवन भर नवदीप में रहा, आनंद किया।
चैतन्य महाप्रभु की इस मधुर लीला का आस्वादन संकीर्तन का जीवन भर ब्राह्मण करता रहा। बस इस लीला को जो सुनता है, वृंदावन दास ठाकुर कहते कि जैसे उस ब्राह्मण को निमाई श्री कृष्ण चैतन्य ने कृष्ण प्रेम दिया, इस लीला को भी सुनेगा जो भी प्रेम से भाव से, उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और उसको भी निमाई पंडित कृष्ण प्रेम भक्ति का प्रदान केवल केवल श्रवण करने से। बोलो, वो ब्राह्मण तो तीन बार भोग लगाया, आपने तन जबकि मर ली थी, फिर भी लाभ उतना ही देंगे, फल उतना ही मिले, केवल केवल श्रवण मात्र से। तो चैतन्य महाप्रभु का जो ये बहिरंग कारण है, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार, प्रेम भक्ति का दान, और इस तरह नटखंड बना करते हुए माता पिता को वात्सल्य रस देने का, सखाओं को साख्य देने, और साथ साथ में सिद्धांत तत्व के साथ पूरा नवदीप, देवी देवता भी मनुष्य रूप लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु की मधुर लीलाओं का आस्वादन करते थे। हमने कल कहा था कुछ समय कि कुछ चर्चा करेंगे भगवान के अतरंग कारण की। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पृथ्वी पर प्रकट हुए 525 वर्ष पूर्व कलयुग में, इसके एक तीन सेपरेट अतरंग कारण है, जिसमें पहला है एक बड़ा सुंदर श्लोक स्वरूप दामोदर ने अपने कड़छा में लिखा है, जिसको रूप गोस्वामी ने विदग्ध माधव में भी, ललित माधव में भी नोट किया, बड़ा प्रसिद्ध है, शायद आप सबको तो नहीं आता होगा, लेकिन सुनिए इसको प्रेम से तो भी शुद्धता प्राप्त होगी। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशोवान एवा। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो, राधा रानी के प्रेम की क्या महिमा है, राधा रानी के प्रेम की क्या गरिमा है, राधा रानी के प्रेम की क्या शान है, की दृश्यो किस टाइप का प्रेम है, किस प्रकार का राधा रानी का कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो जानने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य क्यों बने। बहुत सुंदर बातें हैं जो हम 2-3 दिन सुनने वाले हैं, आप लोगों को इतना ही मूल्य देना है कि आंखें खुली रखनी है बस आधा घंटा। श्याम श्री कृष्ण गौर बने उसके पीछे एक कारण कि राधा रानी के हृदय में कृष्ण प्रेम की क्या महिमा है, गरिमा है, उसको जानने के लिए। तो आप कह सकते तो कृष्ण रूप में नहीं जान सकते, चैतन्य बनना पड़ा इसके लिए। हाँ, नहीं जान सकते, क्यों? क्योंकि कृष्ण विषय है, उसके लिए तो राधा का हृदय लेना पड़ेगा, राधा का भाव लेना पड़ेगा, तब जान पाएंगे ना कि भक्त को कितना प्रेम। जैसे राधा भक्त है, कृष्ण भगवान है, ओके, तो भक्त भगवान के प्रेम के विषय में कितना अंदर महान है प्रेम कृष्ण का भगवान का, वो तो भक्त जानता है ना, वो अनुभव कर रहा है। तो भगवान को भी भक्त को जानने के लिए भक्त बनना पड़ेगा। इसको आप समझेंगे और धीरे से जब व्याख्या होगी तब, केवल अनुवाद सुनिए। दूसरा, स्वाद्यो एन मधुरिमा की दृश्यो वा मदीय। कृष्ण ने सोचा कि मेरे में क्या मधुरता है, मेरे में क्या रस है, मेरे में क्या मादकता विदग्धता प्रेम है जिसका राधा रानी आस्वादन करती है। मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना रसिक हूं, मैं कितना रसमय मधुर हूं जिसका राधा रानी आस्वादन करती है, ये मुझे भी नहीं मालूम। जितना राधा को मेरे विषय में, जितना राधा को मालूम है मेरे रस के विषय में, मेरी सुंदरता के विषय में, वो मुझे नहीं मालूम। तो ये मुझे जानना है, प्रेम की महिमा जानना है और राधा को कृष्ण प्रेम में रस लेने में कितना मजा आता है, आनंद आता है, उसको जानना। तीसरा, सौख्यम चास्यम मदनुभवत की दृश्यो वैति लोभात तद्भावाढ्य समझने सच गर्भ सिंधु हरिंदु। राधा रानी को कृष्ण प्रेम भक्ति रस में कितना आनंद आता है, क्या अनुभव होता है, इन तीनों वस्तु का भगवान कृष्ण को लोभ हो गया, इसीलिए सची गर्भ सिंधु हरिंदु, सची माता के गर्भ से ये कृष्ण ने प्रकट हो गए। जैसे समुद्र से इंदु मतलब चंद्रमा निकलता था,
चंद्रमा समुद्र से जैसे निकलता है, ऐसे सची गर्भ सिंधु से ये गौर चंद्र प्रकट हो गए। देखो अब एक तो है तत्व, एक है लीला। अब ये लीला है तत्व, इसका मिश्रण करेंगे थोड़ा। जैसे एक उदाहरण दो आपको, कृष्ण भगवान पूर्ण है। उपनिषद क्या कहता है, पूर्णमदं पूर्ण ब्रह्म पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। कृष्ण पूर्ण है, कंप्लीट है। लेकिन आप सबने दामोदर लीला सुनी है, माता यशोदा ने कन्हैया को बांध दिया था, वो लीला सबने शायद सुनी है। अब उस लीला पर मैसेज क्या है, हमें क्या, हम इस लीला में क्या देखा, कि भगवान सोए थे और जागे तो माता यशोदा ये कर रही थी, दही मथ रही थी, तो भगवान को भूख लग गया। सुखदेव जी कहते तांस्तन्य कामम जननी, माता के स्तन में जो दूध है उसको पीने की कामना हो गई। किसको, कृष्ण को, इसलिए दौड़ के वहां गए। अब बताओ जो पूर्ण है वो क्यों अतृप्त है, उसमें काम नहीं होना चाहिए। कृष्ण तो काम क्रोध भय रोग सच्चिदानंद है ना, तो पूर्णत्वे अपि अतृप्त स्तन्य काम, उसमें काम आ गया। आप एक तरह प्रवचन करते हो कि भगवान में काम नहीं है और दूसरी तरफ भागवत से सुना रहे हो कि भगवान को कामना हो गई, डबल बात क्यों बोलते हो, ऐसा पूछ सकते हो आप। तो भगवान तत्व से तो सच्चिदानंद है, पूर्ण है, लेकिन जब वो लीला करते हैं, बच्चा बनते हैं, तो वो कामना प्रकट करते हैं। अब उस लीला में दूसरा क्या हुआ, आत्मा रामत्वे अपि बुभुक्षया, भगवान कृष्ण आत्मा राम है फिर भी भूख लगी है। शुद्ध सत्वे नपि कोपेन, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव विशुद्ध सत्व में है, उसको कभी क्रोध नहीं होना चाहिए, लेकिन जब देखा कि माता मेरे को छोड़ के उधर दूध बचाने जा रही, तो सुखदेव जी कहते कि इतना क्रोध आया पटके पत्थर लिया और फोड़ दिया। यही लीला है ना, तो एक पहले तो काम आ गया दूध पीने का, नहीं बराबर हुआ तो क्या आ गया, क्रोध आ गया। तीसरा, स्वराज्य लक्ष्मी अपि, अरे लक्ष्मी के भरतार हो गोकुल में क्या करते हो, चोरी। लक्ष्मी जिसकी घरवाली है और काम क्या कर रहे हैं, चोरी का, क्योंकि वहीं पर वर्णन है कि वो छुप कर चले गए थे वहां जहां अंधेरे में माखन रखा था। और यशोदा जब लाठी लेके ढूंढने आई वो दामोदर लीला में, तो सब बंदरों को क्या कर रहे थे, चोरी से खिला रहे थे। इसे ना ये भागवत में लीला है, तो लक्ष्मी के भरतार होके भी चोरी कर रहे हैं। अच्छा, महाकाल यमराज के भी काल है, लेकिन माता यशोदा ने जब लाठी लिया तो क्या हो गया, डर गया बच्चा, डर रहा है। अरे जो जिससे यमराज डरता है, काल के भी काल हो तो फिर डर क्यों रहे हो। तो काल के काल होते हुए भी, भय के भी भय होते हुए भी उनको भय हो गया। और तीसरी बात, और एक बात, मनोग्रया गति अपि, भगवान श्री कृष्ण के विषय में हमारे वेद में लिखा है कि वो मन से भी तेज चलते हैं। जानते हो आप ये बात, जैसे गरुड़ जी की गति का वर्णन है कि मन मनोवेग, मन जितना मन, देखो आप अभी बैठे हो, अभी सोचो गुजरात भावनगर, एक मिनट में मन उधर जाएगा, एक मिनट क्या आधी सेकंड भी नहीं लगेगी। अगर वो आप पहले जिस स्थान में गए उसको याद करते मन उधर चला जाता है, कितना फास्ट है मन की गति। यहां बैठे बैठे आप अमेरिका सोच सकते हो, जो गए हो जहां भी गए हो, लेकिन गरुड़ तो मन से भी फास्ट। लेकिन लिखा गया है कि गजेंद्र को बचाने गरुड़ भी स्लो लग रहे थे, कृष्ण उसके पहले पहुंच गए। लीलाओं से भी पता चलता है, लेकिन वही कृष्ण को माता जो मन से भी फास्ट, बड़े बड़े योगियों के तप व्रत मन जिसको पकड़ नहीं पाते, उस कृष्ण को परामृष्ट मृत्युंत तो दृत्य गोप्या यशोदा ने क्या कर लिया, पकड़ लिया। और फिर अंतिम में क्या किया, जो सर्वत्र व्याप्त है प्रभु, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसको असीम कहते हैं, माता यशोदा ने उसको बांध दिया। सब विरोधी है कि नहीं, आप सुनो, समझ में आ रही बात। पूर्ण होकर काम आ गया, विशुद्ध सत्व होकर क्रोध आ गया, लक्ष्मी के नाथ होकर चोरी कर रहे, मन से भी तेज होकर पकड़े गए, काल के भी काल होकर डर गए, और सर्व असीम होते हुए भी बंधे गए और अंत में आप सभी कहते हो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद आनंदमय है, लेकिन दामोदर क्या कर रहे
रुदंत मोहर नेत्र,
रो रहा है, दुखी है। आप तो कहते हो कृष्ण आनंदमय है, पर कृष्ण तो यहां रो रहे है, दुखी है, एक भी बात का मेल नहीं है। अब इसलिए एक छोटी सी लीला है, लेकिन इसमें आप देख लीजिए सारी बात। तो फिर हम कैसे समझे इसको? भगवान की दामोदर लीला पर तो कितने लोगों ने क्या क्या लिख दिया है। सुखदेव जी स्वयं कहते हैं पूरा विश्व और विश्व के जितने शिव ब्रह्मा ईश्वर जिनके वश में है वे भगवान माता यशोदा के प्रेम भक्ति के वश में हो गए। मारो कवि काग याद आवे तो गुजरात में के छे आ भजन मा आज लीला ऊपर इन्हें पण कटाक्ष कर्यो छे। जेना मोह बंधन मा दुनिया बंधाणी पूरे दुनिया को जो अपने मोह में बांध लिया है हे निकायुआ हे जारी दोरोड़िए बंधाणी रे नंद रानी तारा आंगणा हो कया पुण्य किरा हे मा यशोदा कि पूरा विश्व जिसको 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 विष्णु ने बांध लिया है और उसकी काया को तूने बांध दिया। गोस्वामी तुलसीदास दामोदर लीला पर एक बात लिखते हैं एक दोहा, जिन बांधो सुर असुर नर मुनि प्रबल कर्म की डोरी, नाग किन्नर गंधर देवता सबको जो अपनी कर्म की डोरी से बांध देता है सोई अविच्छिन्न ब्रह्म बांधो जसोमती सकत न छोरी। लेकिन उसको यशोदा जी ने बांध दिया, ये खोल नहीं सकते। मुकुंद कहलाने वाले पूरी दुनिया को खोलने वाले अपने आप को बिंदु जी ने लिखा, भावनगर कृष्ण कुमार सिंह जी ने कथा रखा था, बिंदु वृंदावन के बड़े प्रसिद्ध संत हुए, वृंदावन से आए थे, बड़ा मधुर कृष्ण के विषय में भजन गाते, रसमय बना देते वातावरण, बहुत सारे उनके पद है। वो बिंदु जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं उस लीला में, अपनी आंखों से अश्रु गिरा रहे, अश्रु बिंद गिर रहा है। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सागर सप्त उछलते देखा, जो केवल अपनी भ्रुकुटी हिला देना आंख हिला दे तो सातों समुद्र उफान ले ले, उनको माँ यशोदा के दर पर अश्रु बिंद जरते देखा। लेकिन माता यशोदा के सामने यही कृष्ण जिसकी रामलीला में वर्णन है कि केवल समुद्र को देख लिए पूरा समुद्र गर्म हो गया। सुना है ना रामलीला में आपने, वो सीता खोज में जाना था तो समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, तो राम जी ने व्रत लिया, बोले 3 दिन उपवास करूंगा, समुद्र देव आपके लिए हमें पार जाना है रास्ता दे दो। लक्ष्मण के रहवा दो एक तीर में हर को करना, हमारा उपवास न करवाना होया हमारे, लखन भाई तू शांत रहे, हम लोग जो धर्म होता है करना। 2 दिन हुआ, 2.5 दिन कोई असर नहीं, समुद्र हिल भी नहीं रहा, तब भगवान भी खड़े हो गए। लक्ष्मण कहते हूं तो पहला कहते तो तुमने अतन भी खोटा तुम कह, और जैसे ही राम ने देखा पूरा समुद्र खोल उठा गरम जलने लगा। इसको कहते भगवान, हमारे गुरुजी याद आते हैं परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते थे कि जो अपने आप को भगवान कहता है उसके आगे एक पानी का लोटा रखो, बोलो इसको गरम करो वो खुद ठंडा हो जाएगा, लेकिन लोटा गरम नहीं हो सकता। भगवान ने अपने देखते ही सारा समुद्र गरम कर दिया, लाखों वो लीटर पानी जिसकी सीमा नहीं। लेकिन वही भगवान मूल क्या करे, अश्रु बिंद गिरा रहे, रो रहे, कुछ नहीं कर सकते। योगियों ने नजरे न चढ़े अने ज्ञानियों ने गोत्यो न जड़े, हे यशोदा आ दामोदर तारी हमें उभो उभो रड़े, तारी हमें रोवे से जे पुरुष ये योगी ओला तब टूटी गया बिचारा है, मिल नहीं रहा उसको और तेरे को ऐसे ही प्राप्त है माता यशोदा किसके बल पर।
इति दृक्ष्व लीला भिरानंद कुंड, बस आनंद कुंड समुद्र में निमज्जित करना है भगवान श्री कृष्ण को सबको। इस कथा को सुनते ही कर्म बंधन खुल जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम श्री कृष्ण चैतन्य बने, एक तत्व है, लेकिन उनकी लीला रस भाव क्या है। एक बड़ा सुंदर शब्द इस श्लोक में आया जो दिया कि उसको लोभ हो गया, भगवान श्री कृष्ण को क्या हो गया, लोभ। आप कहोगे भगवान में लोभ हो, ये लोभ शब्द आज तक कोई शास्त्र में कहीं भी भगवान के विषय में नहीं दिया भक्त, क्योंकि बड़ा खतरनाक शब्द है ये लोभ। लेकिन कहते लोभात, कृष्ण को भी लोभ हो गया, और इसीलिए हमारे आचार्य समझते हैं कि संसार में सबको लोभ क्यों है, क्योंकि मूलमत लोभ से भगवान के हम है और उसमें ही लोभ है, तो फिर उनके जीवों में तो लोभ होगा ही होगा। लेकिन ये लोभ और हमारे लोभ में अंतर है, बहुत सुंदर सुंदर रसमय बात है। इस लोभ में और हमारे लोभ में अंतर है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, उनके जन्म कर्म दिव्य है, तो उनका लोभ भी दिव्य है। आप कहोगे भाई हमारा लोभ भी दिव्य है उनका ही हो सकता है दिव्य, हमारा नहीं हो सकता क्या, क्या लोभ लगा। देखो ये लोभ शब्द गीता में बड़ा निंदा किया कृष्ण ने, काम क्रोध लोभ कहां के द्वार है, सूरत के, अरे काम क्रोध लोभ कहां के द्वार है, नरक के द्वार। अब लोभ शब्दों को कितना खतरनाक बता दिया, बोले खुले द्वार है, वहां अगर किसी में लोभ है तो बेल भी नहीं बजाना पड़ेगा, यमराज कहेंगे पधारो वेलकम ओपन, उतना भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा आपको। और इस लोभ के विषय में जानते हैं भागवत में बड़ा खतरनाक बात लिखा, लोभ को कोट बताया, जैसे कोई सुंदर हो, सुंदर आभूषण पहना हो लेकिन कोट का दाग इधर ही हो तो सारी सुंदरता बेकार हो जाती है। ऐसे आप में कितने भी सद्गुण हो, कुछ भी गुण हो, लेकिन आपका स्वभाव लोभी है, तो जैसे सुंदर व्यक्ति में कोट है, ऐसे ही कोट के समान लोभ बताया अवंती ब्राह्मण की कथा में। अब वो श्लोक सुनाने का टाइम नहीं हमको। और काम और क्रोध से भी लोभ खतरनाक है, गीता में यह भी व्याख्या की गई, क्योंकि काम देखो आपके अंदर कोई कामना आए कि मुझे ये करना है और ये वस्तु आपको मिल जाए ना, तो आपका काम शांत हो जाएगा, होता है कि नहीं। मान लीजिए आपको क्रोध आ जाए, तो क्रोध आए तो आप थोड़ा बोल लो, थोड़ा डांट लो या फिर एक दो लगा लो, तो क्रोध भी शांत हो जाए। लेकिन लोभ, लोभ का एंड नहीं है, काम का एंड है, आपकी मन में जो भी इच्छा वो वस्तु मिल जाए, चाहे पुत्र कोई भी, दान स्त्री कुछ भी, जो भी कामना हो वो मिलने पर उसकी संतुष्टि होती है, शांति होती है। क्रोध भी एक दो लगा दो, थोड़ा गर्म हो जाओ, शांत हो ही जाओगे। लेकिन लोभ ऐसी वस्तु है कि मिलने पर उसका एंड नहीं, इसलिए काम क्रोध से भी लोभ खतरनाक बताया। एक राजा ने, एक दृष्टांत संत लोग देते कि एक राजा ने पूछा सबको कि सब लोग पाप करते, पाप के कारण दुख और नरक जाते, पाप का मूल मतलब पाप का बाप कौन है, वेद राज गुरु बताओ। गुरु जी सर खुजला रहे कि मेरे को विधि पालो, पाप का बाप कौन है। बोले सब लोग मेरा खा रहे हो, बात नहीं बता रहे हो, अगर कल मुझे उत्तर नहीं मिला ना तो सबको निकाल दूंगा या मार दूंगा। सारे ब्राह्मण पंडित टेंशन में, बोले क्या हो सकता है, पाप का मूल क्या है, पाप का बाप कौन है। और राजा दंड देगा, मार सकता है, सभी ब्राह्मणों ने सोचा तारा दरबार में आवे ही बीजो, गाड़ी पकड़े नहीं थी तो बस तू मार ही देगा, कुछ देगा ही नहीं, उत्तर तो है नहीं। और इसलिए चलते चलते जा रहे थे, एक भेड़, गाय, भेड़ समझते हैं ना, भेड़ को क्या कहते हैं आप गुजराती में, घेटू, घेटा, घेटा गाड, भेड़ चढ़ाने वाला एक गमार ग्वाला जा रहा था, बड़ा शरीर तो आप देखे है ना ग्वाला का, सारे सेंट उसी में, उसी से बनते हैं, सारे अत्तर वहीं से प्रकट होते हैं एकदम, और कई एक नहीं होते, घेटे तो आप देखे हैं ना, भेड़ आप देखी होगी, वो नीचे देख के चलती है, पूरा राउंड होता है। कहां में सुनाया था, भावनगर में कहीं सुनाया। वो टीचर पूछा स्टूडेंट से, गुजराती मत कहो तो, कहने के तो छोकरा हो, गणित नो सवाल छे कि एक वाड़ा में 10 घेटा हता, एक घेटो वाड़ू ठेकीन बार जाए, वाड़ ठेकीन तो कितला वधे, छोकरो के एक ही नहीं,
साहब एक कई नो वधे ये कहे तो किसको मारू नाम बदनाम करावीस तो फरीन रिपीट करू छू दस घेटा था मैं एक घेटू बाहर ठेकी जाए तो कितना वधे के साहब कीधु नहीं एक कई नो वधे ताकि तने गणित नो बिल्कुल अनुभव नहीं के आठ हाथ एकादु क्या हो कि एक कई नो वधे तने गणित नो अनुभव नहीं के साहब मैंने गणित नो अनुभव नहीं पण घेटा नो अनुभव से एक जन इन बद्दा जाए एक कई नो वधे कोनी बात था सर आ घेटा के यही पहला आपने नक्की करी बस दौड़ते हैं लोग बस कुछ जानते नहीं धर्म क्या है गीता क्या कहती भागवत क्या कहता है नहीं बस लगे रहो मुन्ना भाई आप जो कर लो वही धर्म नहीं हो जाता धर्म क्या है ये जानो फिर करो ये सिद्धांत आप जिसको मान लो वो सूर्य नहीं हो जाता सूर्य है उसको जानो आप मैं तो इसको सूर्य मान लो तो हो जाएगा दो तीन मेरे मूर्ख लोग भी मान लेंगे लेकिन मेरे मानने से ये बल्ब सूर्य नहीं हो जाता ना ऐसे ही धर्म शास्त्र को सही रूप में समझना वो तो चरा रहा था ब्राह्मण वहां से निकले ओ राजगुरु पंडित जी कहां जा रहे हो बोले बस छोड़ना जा रहा हूं क्योंकि राजा पूछा है कि पाप का बाप कौन है मालूम नहीं मेरे को उत्तर नहीं देगा तो गलत उत्तर भी मार देगा या तो भगा देगा इसलिए अच्छा है पहले से चला जाओ तो कैसे जीवन गुजारा करोगे चलो मेरे पास कल में गाय भैंस चरा रहा था ना भेड़ चरा एक एक संत मिले थे उसने मुझे पारसमणि दिया है तो एक काम करो पारसमणि चाहिए आपको ब्राह्मण सोचा कि ये गाय बकरी चराने वाला भेड़ इसके पास पारसमणि नहीं चाहिए नहीं होगा तेरे पास तू फेंक रहा है बोले महाराज आप जैसे ब्राह्मणों से झूठ बोलूंगा क्या और मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरा तो इससे चलता है और मैं क्या करूंगा पारसमणि का आप जा रहे तो आपको निकाल दिया है आपको समस्या होगी संचार चले इसलिए मैं पूछा नहीं चाहिए तो कोई बात जाओ जाओ कोई और को दे दूंगा मैं अब ब्राह्मण के मन में लोभ हुआ उसने सोचा अरे पारसमणि है तो ठीक है दे दे भैया चल बोले आपने पहले क्यों नहीं लिया अब एक शर्त है क्या ये मेरी भेड़ का दूध पीना पड़ेगा अभी धोता हूं मैं उसको पियो अरे मैं शुद्ध ब्राह्मण गाय के अलावा किसी का और भेड़ का दूध पीऊंगा घेटा नू चल नहीं चाहिए पारसमणि तो मैं कहां का तुम कर लो जाओ मैं तो दूसरे सूरत वालों को दूंगा अब दस कदम चलते ही वापस आया अरे यार पारसमणि है घेटा तो घेटा कौन देखता है मेरे को इधर कौन देखता है उसको आके कहा ए ए सुनो ग्वाला निकाल लो दूध पी लो अब नहीं शरत चेंज तुरंत एक्सेप्ट क्यों नहीं किया अब वो घेटे का दूध जिसमें मेरा घेटा पीता है ना उस वेसल में ई तपेली मां अरे अब घेटे का पिलाएगा घेटे का जूठा पिलाएगा अब तो पीऊंगा ही नहीं नहीं चाहिए मेरे को चला गया तो जाओ फिर ये पारसमणि बोले चलेगा उसके पात्र में दीदा बोले नहीं अब तो पहले मैं पीऊंगा फिर भरवड़ में हटू जीता नहीं अब तो मैं मेरा धर्म तोड़ूंगा ही नहीं पीना गया लेकिन जहां नहीं पाता था एक बार बात लग गई लोभ की ये चाहिए बोले यहां जंगल है कौन देख रहा है घेटे का दूध और उसमें भी वो खुद पीता है उसमें और उससे ये पिएगा खुद जिसमें इतने सुंदर अत्तर की सुगंध आ रही है वो खुद पिएगा ना कभी नहाता ना धोता ना ब्रश करता वो पिएगा चल भैया दे दे बोले अभी और एक चेंज नो कैटेज करे बोले अब तो ये जितने भी घेटे हैं ना उस सब का थोड़ा थोड़ा प्रसाद बिना के बाद देंगे महाराज आपको बोला वक्त एक्सेप्ट करू अत्यार दे कारण के नव काटिस तू पशु बीच चल दे अभी है, चलेगा चल अच्छा लीजिए अब तो तैयार हो गए ब्राह्मण देता पीने के लिए और जैसे ही पीने जा रहे तो एक लात मार के हटा दिया ये ग्वाला बोले क्या कर रहे हो तुम हम लोग इतने गए बीते आप सब एक्सेप्ट कर रहे हो सब शरत तैयार रहे हो गए बोले आपने बोला ना पारसमणि है पर थोड़ोक तो विचार करें पारसमणि दे ढोर सारू हुए तुम्हारे पास आप इतने बड़े ब्राह्मण होकर ये नहीं समझ रहे हो कि अगर मेरे पास पारस होता तो डंडो हलाऊ तड़का नो अगेटा हुआ है थोड़ा तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना बोले कैसे मतलब बोले मैं आपको उत्तर दे रहा हूं जो कल राजा को देना है आपको। ये जितने भी पाप में हम लगते हैं उसके पीछे लोभ कारण है। ये पारस मणि का जो लोभ हो गया ना आपको, यही इतने नीचे गिरा दिया आपको। पाप का बाप लोभ है। पाप बाय लोभ बाय अटक गोद छु। उसके इसी से तरफ होता है। इसलिए रामायण में लिखा काटत बट ही शीश समुदाय जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। रावण का सर राम जी काट रहे तो फटाक से उड़ जाता, दूसरा आ जाता था उसको काटा, तीसरा आ जाता था, चौथा आ ही जाता था। तो गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि काटत बढ़ ही शीश समुदाय, बहुत शीश आ ही जाते थे। जैसे जिमी प्रति लाभ, जैसे ही लाभ होता है लोभ अधिकाई। जैसे जैसे लाभ होगा तो लाभ के साथ कानो मातर लागी जाए तुम्हार लोभ। इतना था तो अभी और, इतना है तो अभी और, इतना है तो अभी और। कई दृष्टांत है भक्तों, सत्य कथाएं है। इसीलिए कृष्ण गीता में कहते हैं लोभ नरक का द्वार। और रूप गोस्वामी ने ये शब्द थोड़ा चेंज किया, लोल्य षट जनसंगश्च लोल्यश्च षड्वीर भक्ति विनश्यति। तो फिर हम भगवान में लोभ है, उनका लोभ दिव्य है, लेकिन उनके अंश है। तो हमारे पास प्रकृति के द्वारा बहिरंगा प्रकृति का कारण रजस तमस का प्रभाव लोभ है। अब लोभ तो जाएगा नहीं, इसलिए हमारे संतों ने एक शुद्ध कला बताई जो सीखनी है हमें, कि चलो हम में सब में लोभ है, थोड़ा बड़ा कम ज्यादा जो भी, वो लोभ मरेगा नहीं, जाएगा नहीं। मर चुके हो लोभ नहीं जाए, करे क्या? एक उपाय है, जिस उपाय को प्रेम भक्ति चंद्रिका के रचयिता नरोत्तम दास ठाकुर ने सिखाया। वो उपाय यह है, लोभ साधु संगे हरि कथा। आप में लोभ है, उस लोभ का सदुपयोग करो सत्संग सुनने में, भजन करने में, कि आज भी सुना कल भी सुनूंगा, इसका भी सुनूंगा, गीता भी सुनूंगा, भागवत भी सुनूंगा। सत्संग करने में, जप करने में हमारा लोभ होना चाहिए। लोभ है ही तो इसका यूज करो ना सत्कर्म में। लोभ साधु संगे हरि कथा, ये उपाय है। और रूप गोस्वामी ने तो इसको परम मूल्य बताया, तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकदम। कृष्ण प्रेम से रसमती भाविता कहीं मिल रही है जो करोड़ों जन्मों की सुकृति से नहीं मिलेगी, वो मिलेगी केवल आपके पास एक लोभ होना चाहिए, लालसा होनी चाहिए कि मुझे कृष्ण प्रेम भक्ति पाना है, कथा सुनना है, इसमें लोभ करो। जैसे आप नवदीप धाम में परिक्रमा करो, वहां एक नेमिषारण्य है जिसमें भगवान शंकर को लोभ हो गया, क्या कथा सुनने का, बोले नेमिषारण्य में कथा हो रही है और भगवान शिव ने कहा कथा में जाना, ए नंदी चलो, नंदी तुम्हारे थे उभो, और शंकर जी चढ़ गए उस पर वृषभ ध्वज। शंकर जी ने सोचा ये जब कथा खत्म होगी प्रसाद टाइम में पोक्षे आके टाठो बोला दो, बोले चलो जल्दी, लेकिन नंदी बोले क्या करे महाराज चल रहे है, और कथा छूटी जा रही है। शंकर जी को कृष्ण कथा इतनी प्रिय है, कैलाश में करते रहते, और कैलाश में कहीं नहीं होता तो कुंभज ऋषि पाई जाए, संतों के पास जाते करते। बोले नेमिषारण्य में गौर कथा, चैतन्य महाप्रभु का भागवत हो रहा है, मैंने कृष्ण कथा सुना राम कथा सुना, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला प्रेम वदान्य का अवतार उसको तो मुझे सुनना है, चल नंदी। नंदी के आज प्रभु बहु उतावल मांसर फिर कटा भी नक्श मारा, तब तक बोले ये नहीं पहुंचाएगा। कमलासन ब्रह्मा को भगवान ने कहा प्रभु जी आपका हंस मिलेगा क्या, कारण क्या टाटू बढ़ से, क्योंकि हंस ब्रह्मा किस पे चढ़ते हैं उड़ते हैं, हंस पे। तो भगवान शिव कभी भीख नहीं मांगते, दातार से ओढ़र दानी से भाई, शिव समान दाता नहीं विपद वितारण हार, लजिया मोरी रखियो नंदी के सवार। ऐसे कभी किसी से भीख मांगे सब उनके द्वार जाते, भगवान शिव लुटाते रहते रावण जैसे को, ले जाओ भीख मांगो मारती आगे रो बस निकल अपने के बिकन आला 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 आला। वो शिव जी का ऐसी स्टाइल है, सबको देते रहते जो भी मांगो ले जाओ, मुझे राम राम करने दो नड़ो मां, सब जाते रहते क्योंकि उसके पास खजाना है। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, बड़ा है तेरा दाए जा बड़ा दातार तू, बड़ा दाता जी भीख थोड़ी मांगेंगे, लेकिन कथा के लिए भगवान शिव ने कहा दे दो। और शिव जी को शिव जी मांगे और सौभाग्य है ना, ब्रह्मा जी ने अपना वाहन दे दिया, शिव जी हंस पर चढ़ गए और इसीलिए नवदीप में भगवान शिव का नाम है हंस वाहन, ऋषभ वाहन नहीं, क्या वाहन हो गया, हंस वाहन, क्योंकि मुझे भगवान गौरांग चैतन्य की कथा छोड़नी नहीं है। और इसीलिए काशी विश्वनाथ काशीपति गौर कृष्ण कीर्तन सुनने के लिए हंस मांगे, ऐसी लालसा आप में लोभ है तो ऐसी जगह में लोभ होना चाहिए। और यही लोभ भगवान विष्णु को हो गया। विष्णु को क्या लोभ हुआ, विष्णु को लोभ हुआ कि मैं इतने दिनों से वैकुंठ में सोया हूं, सब लोग आरती उतार रहे हैं, पंखा झाल रहे हैं, लक्ष्मी जी सेवा कर रही है, कभी कितने दिनों से हाथ साफ नहीं किया, कोई नहीं, बाध्यो नहीं थे हमने को भगवान को एक एक रस, एक वीर रस, क्योंकि रस के समुद्र है ना, तो उसको लोभ होया कि थोड़ा फाइटिंग करता। देखो सिंपल मूवी अच्छा नहीं लगता, एक्शन साउथ, साउथ की फिल्म का भी क्रेज चल रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें एक्शन होता है, टाटी फिल्म मजा ना आए, तेना जो कुछ एक्शन होना चाहिए, सोच रहे भगवान विष्णु कि थोड़ा एक्शन होता तो अच्छा होता। कितने दिनों से लोभ हो गया, लड़ने का लोभ, वीर रस का लोभ, लेकिन अब भगवान के साथ लड़े कौन, भगवान को कुछ भी इच्छा होती है तो आध्यात्मिक योग में आवे सब वातावरण व्यवस्था करती, भगवान के साथ लड़ने के लिए भगवान जैसा चाहिए ना, WWE के जॉन सीना के साथ तारक मेहता ना पोपटलाल थोड़ा हल्ले यार, कुछ कुछ सेम भी तो होना चाहिए ना। भगवान सोचे मेरे साथ लड़ेगा कौन, एक मिनट में हीरो जीरो हो जाएगा, तो किसके साथ लड़ू, लड़ना तो है वीर रस लोभ तो हुआ, लेकिन लड़े किसके साथ, तब योग माया के द्वारा व्यवस्था की। वो चार कुमार घूमते घूमते वहां आए और द्वारपालों ने रोक लिया, जय विजय ने, कथा भागवत से जानते हो, और तुरंत ही श्राप दे दिया, भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। ये चारों कुमार सोच रहे कि हम लोग ब्रह्मा ने भेजा, वैकुंठ में भेजा, ये द्वारपाल रोके, इसका धर्म है कि भाई किसको, उसका धर्म निभा रहा है ना, भगवान ने उसको रोका कि कोई आ ना जाए, तो हमें गुस्सा होकर श्राप नहीं दे देना चाहिए, हम गलत किए। और ये द्वारपाल क्या सोच रहे, हमारे प्रभु तो भक्तों का संतों का आदर करते हैं और हम इनके सेवक होकर इनके संत, अब दोनों, तब तक भगवान पहुंच गए और भगवान ने कहा ये आप लोगों का किसी का दोष नहीं है, मैं थोड़ा चाहता था फाइटिंग, और मेरे साथ ये सूरत वाले तो लड़ नहीं सकते, मेरे साथ तो मेरे जैसे, इसलिए आप लोगों को मुझे नीचे भेजना है, क्यों, क्योंकि फाइटिंग लड़ाई झगड़ा वैकुंठ में नहीं होता, वो सब सूरत में होता है, अरे सॉरी पृथ्वी पर होता है, तो भगवान को भी लड़ना होता है तो यहां आता आना पड़ता है। तो लीलाधारी वैष्णव विष्णु भगवान ने इस विश्व को रंगमंच बनाना चाहा और इसलिए पृथ्वी पर उतरे वो, और इनको कहा कि आप लोग डरिए मत, सनत कुमारों को कहा कि आपने अभी कमी किया, आपने इन पार्षदों को दंड दिया लेकिन मुझे नहीं दिया, स्वामी की गलती, सेवक की गलती, किसकी गलती माने, स्वामी की, तो मुझे भी दो। और उसको भी कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम लोग तीन बार जाओगे, तुम्हारे लिए मैं 4 times आऊंगा। बोले हम नीचे क्यों जाए, ये कैसे हो गया श्राप श्रापी, इसमें बहुत सारा प्रश्न है, टाइम नहीं बताने का, लीला सिद्धांत आप पूछ सकते हो कि वैकुंठ में भी न्याय तेरा श्राप मिले तो न्याय देने हक तो नहीं है टुकबा, ऐसा प्रश्न भक्त कर सकता है कि उधर भी श्राप दे दिया तो? और ऐसी तो बहुत कथा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा है कि वो विरजा नदी जल के रूप में हो रही थी तो राधा रानी गुस्सा की कृष्ण के ऊपर कि यहां कोई स्त्री थी, तो कृष्ण का कोई स्त्री नहीं थी, तुम ही थो, बोले नहीं मुझे डाउट है कोई तो था। और विरजा क्या करती थी, दिव्य शरीर है तो जल के रूप में हो जाती थी, तब राधा रानी ने कहा कि नहीं तो कोई तो है, तो समझ गए कि ये पानी, ये नदी, ये विरजा है, और राधा रानी ने कहा कि तो पानी बनी रहे। और कृष्ण को इतना राधा रानी गुस्सा, प्रेम से प्रेम करे ही वटे, मुंजाता नहीं तुम्हें लोग, तुमने कदा कोक वटे ये प्रेम करता हुआ ये मनु प्रेम करे ही वटे ना, तो राधा रानी प्रेम से उसको डांट रही है कृष्ण, ऐसा कि तो श्रीदाम जो राधा रानी का भाई मतलब कृष्ण का सखा गुस्सा हो गया, बोले तू किसको डांट रही है राधा, पूरे विश्व ब्रह्मांड जिनका जप तप करता है उस कृष्ण को कोई तू ऐसे बोल रही है, तुमको शर्म नहीं, ये तू हमारे बीच में क्यों बोल रहा है, राधा रानी कहती है। और उसी समय श्रापा श्रापी हो गए और राधा रानी को श्रीदाम ने श्राप दे दिया गोलोक वृंदावन में, ब्रह्म वैवर्त में व्यास भगवान लिखते कि तू कृष्ण को इतना डांट रही है, मैं श्रीदाम तुझे श्राप देता हूं कि 100 वर्षों तक तुझे कृष्ण से दूर विरह में रोना पड़ेगा, तब पता चलेगा अब मिला है ना। तो इतना ये कर रही है, लेकिन 100 साल तक पृथ्वी पर कृष्ण से दूर विरह में तुझे रोना पड़ेगा। ये श्रीराम ने राधा, इसलिए ये जो मथुरा लीला हुई ना राधा रानी का जो विप्रलंब है, 100 साल तक कृष्ण उससे मिले नहीं, दूर रहे, और राधा कृष्ण विरह में रोए, उसके पीछे बैकग्राउंड व्यास जी ने ये दिया। बाह्य रूप में अंदर से तो चंद्रमा से जैसे चांदनी अलग नहीं, कोई राधा से कृष्ण को अलग नहीं कर सकता, लेकिन लीला में ये हुआ। और राधा रानी ने भी साथ दिया, तू भी असुर बन जा, वही शंखचूड़ बन के आया था। तो अब ऐसी कथा सुनोगे तो आप लोग कहोगे तो मतलब न्याय हक तो नहीं चीते हम सुनते, हमें तो चले कि प्लान माइंड हो तो कूका के एंड कर जाइए, प्रोग्राम कैंसिल आई ना कर शो, इतना सारा प्लान इसी के लिए हो रहा था। आप तो बोल रहे कि वहां भी यही चल रहा है, तो वहां ऐसा नहीं है, ये सब भगवान का अरेंजमेंट है। और वहां जो ये श्राप है, लोभ है, क्रोध है, ये सब दिव्य है, ये प्रेम समुद्र की तरंग है। ये जब हम प्रेमी बनेंगे ना शुद्धतम समझेंगे धीरे धीरे। बोले हे द्वारपालो जय विजय, तुम जाओगे ना पृथ्वी पर नीचे, तुम्हारे कारण हजारों लोग वैकुंठ में ऊपर आएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, लीला करूंगा, और ये कथा को जो भी सुनेगा वो मेरे धाम में आएगा। भगत लोग जब नीचे आते हैं ना तो हजारों लोग भगवान के धाम जाते हैं, और तभी लोगों ने कहा अच्छा तो ये सेवा हो गई, तो हम जाएंगे नीचे। जो बना वो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। बड़ा सुंदर भजन भाव है, मामा जी बक्सर वाले गाते थे, हमने यहाँ लिखा है, गाना नहीं हमको, बड़ा मधुर। कितना भक्त इसे कहते हैं, जो बना वो बन जाएंगे, जहां भेजो वहां जाएंगे। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते मार भी राख भी, मारो तारो प्रभु गमे, जेवो तेवो पण तारो हाथ पकड़ हरी, दास पुनीत ने इतली अर्जी, बस ऐसे सभी भक्तों ने ये मूड दिया है, ये भाव दिया है। तो भगवान ने सोचा कि अब वीर रस का आस्वादन करूंगा, और वीर रस का आस्वादन करने के लिए जय बना हिरणाक्ष, विजय बना हिरण्यकशिपु, और भगवान बने वराह और नरसिंह, और नरसिंह अवतार लेकर फाड़ दिया छाती हिरण्यकशिपु की, और प्रहलाद को गोद में बिठा के हाथ घुमा रहे, तो प्रहलाद को मजा आ रहा, आनंद आ रहा, नरसिंह देव को भी आनंद आ रहा। पिता जब पुत्र से प्रेम करता है, पुत्र पिता का प्रेम पाता है, तो दोनों को आनंद आता है, लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा आनंद पुत्र को आता है। आप सब जानते हो पुत्र बने थे तब सुखी थे कि पिता बने तब, अमा ठाकुर तो प्रसिद्ध दिन शोक रहता था, आपड़ा था तकलीफ था, क्योंकि टेंशन पिता को होता है क्या करे, पुत्र को क्या है। पुत्र तो नरसिंह देव ने सोचा, अरे मेरी गोद में बैठा इतना खुश है, देखो एक लोभ, लोभ का मैंने बताया ना, एक पूरा हो तो दूसरा होता है। वीर रस आस्वादन का लोभ हुआ, पूरा हो गया, वीर रस लड़े मार दिया, फाइटिंग हो गया, सीन खत्म। लेकिन अब लोभ हुआ कि प्रहलाद को ज्यादा सुख है, क्योंकि ये भगवान बन के मारने काटने फाइटिंग में वो रस नहीं जो पुत्र बन के प्रेम लूटने में है। लेकिन भगवान ने सोचा चलो मैं भी मेरे बाप की गोद में बैठता हूं पिता की, लेकिन पिता तो थंबा है, थंबलम किम बेहू, अब क्या करूं। बोले अब जब मैं अवतार लूंगा तब पिता की गोद में बैठ के भोजन का, प्रेम का, रस का, वात्सल्य का सुख लो। और इसलिए त्रेता युग में लोभ के कारण भगवान नरसिंह राम बन के दशरथ जी के आए। भोजन कर बुलाव ही राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। दशरथ जी बुला देते हैं राम आओ भोजन के लिए, ऐसे वहां पे भी एक लोभ पूरा हो गया लेकिन एक बढ़ेगा, क्योंकि जो पिता की गोद में बैठने का आनंद तो लेंगे, लेकिन सखाओं के साथ खेलने का एक अलग आनंद होता है। कृष्ण को था ना, माता यशोदा बुलाती थी, हे नंदलाल आओ टाइम हो गया, दोपहर हो गया, बेला हाईली दामोदर आई सो एखो न भोग मंदिरे बोशी कर हो भोजन। तो लोभ तो है, इस लोभ की कथा को कल करेंगे, समय अतिक्रमण हमें करना नहीं है। लेकिन आप भक्तों सोचिएगा इस बात पर, मैं यहां छोड़ रहा हूं ये प्रवचन, इतना रसमय मधुर है चैतन्य कृष्ण, लोभ बढ़ता 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 कहां तक चला गया, और कैसे इसमें भगवान का चिंतन होता है, भगवान का नाम आता है, भगवान की लीला आती है, जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और हमें साथ साथ में ज्ञान मिलता है कि किस पथ पर हमें चलना है। ये बहुत उपादेय प्रसंग है, लेकिन अब 11:30 हो गया और आप लोग सोने वाले हो, ऐसे भी सो रहे थे कुछ लोग, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा। लेकिन भगवान कृष्ण की ये मधुर लीला में मस्त बनते हैं महादेव। लिखा गया है चैतन्य ने लीला सुनने के लिए, जब शिव जी आए हंसवाहन बनकर तो इतना मस्ती में थे, कथा हो गई, कथा खत्म हुआ, सुत गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की लीला सुनाई, लीला सुनाते सुनाते कहा कि चैतन्य महाप्रभु की तो एक ही लीला है मुख्य लीला, जैसे कृष्ण की मुख्य लीला रास लीला है, तो वही कृष्ण चैतन्य बने तो उनकी मुख्य लीला है संकीर्तन लीला। तो जैसे ही संकीर्तन चालू हुआ तो महादेव मस्ती में लगे नाचने, नारद जी नाच रहे, ब्रह्मा जी नाच रहे, सारे ऋषि मुनि नाच रहे। मैं चाहता हूं कि हम भी थोड़ा संकीर्तन करें, क्योंकि यहां पर गौरांग की लीला है केवल संकीर्तन। ये लोभ की बातें तो चलती रहेगी और संकीर्तन करेंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा काम क्रोध लोभ कहां खत्म हो जाए। तो धन्यवाद, आपने इतना धैर्य से सुना। और कल मुझे थोड़ा दुख था कि मैंने 12 बजा दिया, आज तो मैं घड़ी को देखते ही रहता था कि नहीं बजाना। लेकिन आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आज क्रिकेट मैच था फिर भी आप लोग आए, मतलब आप चैतन्य के फैन हो, कोहली के नहीं। अगर आप उनके होते तो वो भी, मैं जब आया गाड़ी में तो भक्त लोग बता रहे थे कोहली अभी सिक्सर मार रहा है। बोला अच्छा है, क्या हुआ भारत का, कुछ कोई तो होगा यहाँ जो देखो पता होगा, युवाई द हरी गया भारत कोई दिन आ रहे हरी तो आप था है। आप बोलो आई बैठा एट जीती गया ना, हो तो हरी सा गाइए मूर्तिमान रहू, संकीर्तन करते खड़ा होकर हमें जीतना है। जो संकीर्तन करता है वो जन्म मृत्यु को जीत लेता है। हरिनाम संकीर्तन की निदाय गौर हरि प्रेम नंदे। और उस अगली कथा को कल हम सुनाएंगे कैसे लोभ होगा और कैसे चैतन्य महाप्रभु लीला करते हैं। धन्यवाद।
हरे कृष्णा
हरि बोल,
कृष्णा कृष्णा हरे रामो हरे रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामो Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare
Krishna चंद्र गोविंद प्रभु तरफी हरि बोल बोली ने स्वागत करिए।
हरि बोल। વલ્લભભાઈ ખીમજીભાઈ પ્રજાપતિ તરફથી 11,111 સ્કોન ભાવનગર તરફ મંદિર માં ટાઈપા છે.
ઓ હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે,
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ.
11,000 રાધા દામોદર તરફથી આવ્યા છે. જે ભક્તોને વરાછા મંદિર માટે કંઈક ડોનેશન આપવું હોય તો આપી શકે છે નીચે ટેબલ ઉપર.
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare
Krishna, Hare Krishna, Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Rama Hare Rama 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 Hare
ગોર પ્રેમાનંદે
રાધા દામોદર મંદિરમાં ઇસ ગ્રેસ ગુડાકેશ પ્રભુ દ્વારા શ્રીમદ ભાગવતમ ક્લાસ